जय राधा माधव कुंज बिहारी श्रीमद भगवद गीता की जय। मेरे बात दोहराए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तं स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते Gopesh Gopika Kantam Sri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vyasyam Kripa Sindhubhyayevacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanandam Shri Advaita Gadadharam Shri Vasadi Gaura Bhaktavindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Janmadhasya yatonvayaditaratam Charteshvabhigyaswaram Tene Brahma Hridaya Adikavaye Mohiyantiyasurayam Tejo Varimhridaya Thabinimayom Yatra Trisargomrisam Dhamna Svinasadanirastakuhakam Satyam Param Dhimahi Satyam Param Dhimahi Gurve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Hare Krishna To sabhi सभी आत्माओं का स्वागत करते हैं, है ना? अभी हम समझे ना एकल कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तभी अब तक मैं सभी लोगों का स्वागत करता था, लेकिन आज मैं सभी आत्माओं का स्वागत करता हूँ, क्योंकि वो रियल ज्ञान हुआ कल, है ना? तो सभी आत्माओं का इस भगवद गीता के चतुर्दिवस में, चौथे दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो उधर बैठो, उधर बैठो, उधर बैठो। अभी अभी आने का नहीं, तो उधर इधर बैठा दूंगा, है ना? उधर बैठो। तो हमने पिछले चार तीन दिनों से, आज चौथा दिन, जो कि इस भगवद गीता का जो मूल सिद्धांत, कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवद गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवद गीता अमृत ग्रंथ है, अमृत अमृत ग्रंथ है। 5000 वर्ष पूर्व इसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया भगवद गीता का, और ये 5000 वर्ष पूर्व भी भगवद गीता हर एक समस्याओं का समाधान हुआ करती थी, और आज भी अगर हम इस भगवद गीता का सहारा ले तो हर एक समस्याओं का समाधान इस भगवद गीता से हो जाए, अगर हम इसका सहारा ले तो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इस ग्रंथ को, जो हमारी धर्म ग्रंथ है, इसको हम भूलते जा रहे हैं, और इसलिए भी समस्याएं हैं। अगर हमको सही से समझने का अगर प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे ना, निश्चित रूप से हम बड़ी से बड़ी समस्याओं से, अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं, इससे दूर कर सकते हैं। वास्तव में जो भगवद गीता है, व्यक्ति के जीवन में शांति लाने वाला है गीता, और समाज में क्रांति लाने वाली चीज है ये भगवद गीता। अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो परम शांति की अनुभूति करेंगे हम, और इतना ही नहीं, इस समाज में क्रांति को ला देगी। अगर हम इसको वितरण या इसके बारे में लोगों को बताते हैं इत्यादि इत्यादि, तो पूरे समाज को बदल देगी, पूरे समाज को बदल देगी। तो जैसे कि अर्जुन कंफ्यूज था, किं कर्तव्य विमूढ़ था, लेकिन भगवत गीता सुनकर वो अपने कर्तव्य का पालन करने लगा। भगवत गीता को जीवन में अगर हम उतारते हैं या उसको पढ़ते हैं तो हमको निश्चित रूप से क्या प्राप्त होता है, भगवत गीता के अंतिम श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया। कौन ऐलान करता है? संजय ऐलान करता है, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था ना, तो राज्य में अपने महल में ही बैठा हुआ था। उसको गीता कौन सुना रहा था? संजय सुना रहा था, क्योंकि संजय के पास वो दिव्य दृष्टि वो वेद व्यास जी के द्वारा प्राप्त था, जो कि महाभारत के युद्ध का महाभारत के युद्ध का लाइव स्टेटस जो है ना, संजय के पास वो शक्ति प्राप्त था, वो देखकर वो धृतराष्ट्र को सुना सकता था। उस संजय ने गीता का अंतिम श्लोक बोला और धृतराष्ट्र को यह बता दिया। अंतिम श्लोक बोलते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। हे धृतराष्ट्र, जहां पे भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण है और पार्थ धनुर्धारी अर्जुन है, वहां पे क्या होगा? तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम, वहां पे ही विजय होगा। अनाउंस भले ही कर दिया कौन जीतने वाला है। ये गीता को अगर हम अगर अपने जीवन में उतारते तो वहीं पे श्री और विजय वहीं पे प्राप्त होता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, विजय मतलब हर एक क्षेत्र में वो विजय की प्राप्ति करेगा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो विजय की प्राप्ति होगा उसको, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ है। और इस स्वयं बात इस बात को भगवान स्वयं बोलते हैं, भगवान स्वयं कृष्ण बोलते हैं कि ये धर्म ग्रंथ है, क्योंकि भगवान के मुख से जो निकला हुआ चीज है वो हर एक चीज धर्म होता है, हर एक चीज धर्म होता है। और ये गीता भगवान के मुख से निकला हुआ है, इसलिए एक धर्म ग्रंथ है। महाभारत के उस युद्ध में देखिए कि जहां पे युद्ध का आठवां दिन समाप्त हुआ, टोटल कितने दिन तक युद्ध चला था? 18 दिन तक। युद्ध का आठवां दिन समाप्त हुआ तब तक कोई भी मारा नहीं गया था। उस समय दुर्योधन की जो है ना खोपड़ी सटक गया, क्योंकि उसके पक्ष में कौन कौन थे? बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण, कितनी सारे बड़े बड़े योद्धा थे उसके पक्ष में। उस समय दुर्योधन गया भीष्म पितामह के पास, क्योंकि उस समय लीड कर रहे थे भीष्म पितामह, सेनापति थे। जाके बोला कि पितामह 8 दिन बीत चुका, अभी तक कोई मारा नहीं गया, आप नमक हरामी कर रहे हो। इस प्रकार का शब्द कड़क शब्द बोलने लगा हो, आप अभी भी पांडवों से बहुत प्रेम करते हो, रह रहे हो मेरे पक्ष में, लेकिन प्रेम उन लोग के प्रति दिखा रहे हो। इस प्रकार का कठोर शब्द जब बोला भीष्म पितामह को, तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं कल के युद्ध में निश्चित रूप से पांडवों में से किसी एक को मार डालूंगा। प्रतिज्ञा किया उन्होंने। कथा बहुत लंबी है, लेकिन मैं कुछ चीजों को गीता के संबंधित बताना चाहता हूं, इसलिए मैं इसमें नहीं जाएंगे, नहीं हमारा सब दूसरी चीजें बच जाएगा, हमारे पास लिमिटेड समय है। एक्चुअली कथा है तो केवल भीष्म पितामह के इस संवाद ही 2 घंटा चल सकता है। इतनी रोचक संवाद है कि कोई हिले तक नहीं यहाँ से। इसी रोचक संवाद है किस प्रकार से युद्ध हुआ जो है उसका वर्णन हम कभी चर्चा करेंगे, अगर इसको रेगुलर अगर कंटिन्यू अगर आप लोग की इच्छा होगी तो हफ्ते में एक दिन करेंगे, तो ये सारे चीजें हम एक एक करके करेंगे बताएंगे। तो उस समय महाभारत के युद्ध में कभी भी अर्जुन को पसीना नहीं आया था, लेकिन आज भीष्म पितामह ने जैसा युद्ध किया ना, अर्जुन को पसीने आने लगे। और उस समय भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह इतना तेज बाण को मार रहे थे। आज ना ये पंखा घूम रहा है ना, तो दिखाई नहीं दे रहा ना, उसमें 3 ब्लेड है, वो जब ही तरकस से अपने निकालते थे ना वो इस प्रकार से होता था। और अर्जुन पूरा बौखला गया जब देखे कि मार देगा आज भीष्म पितामह मेरे भक्तों को आज मारेगा। तो भगवान ने तुरंत क्या किया, रथ पे से कूद पड़े और चक्का उठा लिए। मानो ऐसा कहते हैं कि भीष्म कहते हैं कि अधर्म, आपने बोला था कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे, ये अधर्म है, मानो ऐसा कहते हैं कोई संत। तो उस समय कृष्ण ने याद दिलाया, जब लक्षागृह में पांडवों को योजना बनाएगी जलाने की, तो उस समय आपको मालूम था ये बात, फिर भी क्यों नहीं कर, उस समय अधर्म की बात नहीं चल रही थी, आप नहीं बोले कि अधर्म है। जब भीम को दुर्योधन इत्यादि मिलकर उसको गंगा में फेंक दिया, उसको जहर खिला के, तब कहा अधर्म की बात तब नहीं किया? अरे सब छोड़ो, भरी सभा में आपके सामने द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, तब कहां गया था आपकी धर्म की बात है? अर्जुन क्या देख रहे हो, मारो, क्या देख रहे हो? क्योंकि जब भगवान उतर के शस्त्र को उठा लिए ना, तो भीष्म पितामह सबसे बड़े भक्त थे भगवान के, एक्चुअली वो तो चाहते थे कि भगवान प्रतिज्ञा इसलिए किए थे क्योंकि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे और मुझे मारेंगे, और भीष्म पितामह को भगवान के हाथों मरना था, इसलिए वो प्रतिज्ञा किए थे। और जैसे ही भगवान आए और तुरंत ही सब कुछ शस्त्र शस्त्र छोड़कर खड़े हो गए भीष्म पितामह, और उसके बाद अर्जुन बोला देख क्या रहा हो, मारो। भगवान ने बोला अर्जुन को, उस समय अर्जुन ने मारा और छल्ला कर दिया, जो आपको पता है कि किस प्रकार से बाणों की सैया बना दिया। बड़ी लंबी बहुत रोचक प्रसंग है, कभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि जो भी कुछ निकलता है भगवान के मुख से वो क्या है, धर्म है। हर एक चीज धर्म है भगवान के मुख से निकला हुआ। ये जो भगवद गीता ना, एक्चुअली भगवान का उच्चिष्ट है। हम रोज सुंदर प्रसादम का आस्वादन करते हैं ना, मैं बोलता रहता हूँ कि प्रसाद खाइए, सब लोग प्रसाद खाइए, जिसको भी नीचे देता हूँ प्रसाद खाइए, भले से क्लास में नहीं आए लेकिन प्रसाद के लिए आ जाओ, क्योंकि इतनी महिमा है ना कि उस चीज को हम ग्रहण करते हैं ना, कितने सारे अंदर के कलमस पाप नष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति के, क्योंकि भगवान का उच्चिष्ट हो, भगवान का उच्चिष्ट है। ऐसे ही गीता जो है ना, भगवान का उच्चिष्ट उनके मुख से आई हुई है, इसलिए अगर हम इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे कलमसों से मुक्त हो जाएंगे। तो गत सत्र में हमने क्या सुना, कोई बताए, कल के सत्र में हमने क्या सुना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, हमने कल देखा, और केवल देखा ही नहीं, हमने ये सिद्ध किया है ना बहुत सारे प्रमाणों के साथ, और वैसे भी आप लोग के साथ ही मैंने बात करके बताया, बात करके ही बताया कि किस प्रकार से हमें शरीर नहीं आत्मा है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी मैंने शास्त्रों की बातों को लाके ठोका इधर, ऐसा नहीं है, आप लोग के ही माध्यम से प्रश्न पूछ पूछ के मैं वो सिद्ध किया। तो बहुत सारे चीजों को हमने कल देखा कि हम किस प्रकार से शरीर नहीं हम आत्मा है, और विशेष करके 10 तत्वों की, हमारे शरीर में 10 तत्व हैं, ये पूरा शरीर जो है 10 तत्वों से बना हुआ है। एक संक्षिप्त रूप में मैंने एक प्रकाश दिया था कि ये जो पंच महाभूत, ये शरीर जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अंदर एक और शरीर है सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, और दूसरा आत्मा और परमात्मा, ये 10 तत्व है। तो प्रश्न ये उठता है अभी कि हम आत्मा है तो ये क्या है, ये शरीर क्या है, थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो इस शरीर जिसको पंच महाभूत कहा गया है, पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 चीज से, ये शरीर जो हमको दिख रहा है शरीर ना, ये 5 चीज से बना हुआ है, जिसको बोलते हैं स्थूल तत्व। ये भौतिक है, क्योंकि भौतिक चीजों का नाश होता है, इसलिए इस शरीर का भी नाश होता है समय अनुसार। तो ये 5 चीजों से ये शरीर बना हुआ है जो कि स्थूल तत्व है। तो अभी आप कहेंगे, जैसे कि मैंने प्रश्न पे कल छोड़ा था कि इसमें पृथ्वी कहाँ पे है, अग्नि कहाँ पे है, आकाश कहाँ पे है, वायु कहाँ पे है, आकाश कहाँ पे है, तो हम इसको देखिए पृथ्वी कहाँ पे है हमारे शरीर में। तो हम जो भी खाते हैं ना, जो भी दिन में, क्योंकि हमारा जीवन कैसा है, अन्नमय जीवन है, हम अन्न नहीं खाए तो नहीं जी पाएंगे। तो अन्न कहाँ से प्राप्त होता है, कंपनी से, राइस कंपनी में बनता है, कहां से बनता है, पृथ्वी। पहला तत्व तो क्या है, पृथ्वी हमारे शरीर में। तो हम जो भी हमारा शरीर धारण है, हम जीवित हैं किसके कारण, पृथ्वी के कारण, क्योंकि अन्न वहां से उत्पन्न होता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, गीता में वर्णन है, अन्न पृथ्वी से उत्पन्न होता है, जिसको हम खाकर अपने शरीर को धारण किए हुए हैं, अन्नमय जीवन। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में पृथ्वी का कितना महत्वपूर्ण है। कोई बोल सकता है कि मैं तो मांस खा के जीता हूँ, बोल सकता है ऐसा भी, कोई मैं सब तो मांस खाते हैं, हम तो शाकाहारी नहीं मांस खाते हैं। तो मैं उनके लिए भी वो बताना चाह रहा हूँ कि मांस भी खाते हैं, तो जिस जीव को खाते हैं उसका शरीर किससे बना हुआ है, पृथ्वी, उसका भी शरीर उससे बना हुआ है। तो अल्टीमेट क्या हुआ, पृथ्वी। पृथ्वी जो कि हमारे ये पहला तत्व है पंच महाभूतों में से, पृथ्वी का अंश हमारे इसमें है। दूसरा जल, आप सभी जानते होंगे कि जल की मात्रा शरीर में ज्यादा होनी चाहिए, जल की मात्रा 70% शरीर में जल की मात्रा होनी चाहिए, कम होता है तो हॉस्पिटलाइज होते हैं, है ना। तो जल की मात्रा जो है शरीर में, क्योंकि जल की मात्रा ज्यादा होने से ब्लड सर्कुलेशन बराबर चलता है। आपको याद होगा कि जब भी हम हॉस्पिटलाइज होते तो क्या चढ़ाया जाता, पहले पानी लगा देता बॉटल, तुरंत बॉटल लगा देते हैं डॉक्टर, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन बराबर होता रहता है। इसलिए पानी अधिक पीना चाहिए, खाना से, भोजन से पानी की मात्रा अधिक होना चाहिए, भोजन कम होना चाहिए और पानी की मात्रा अधिक होना चाहिए। क्योंकि पानी की मात्रा अधिक नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से शरीर चलायमान नहीं हो सकता है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अंदर चले जाओ, थोड़ा देर तक बैठो अंदर, और अंदर थोड़ा एसी चालू कर दो ना, उन लोग को अच्छा लगेगा। आप अंदर लेके चले जाओ। तो ठीक है, चलिए सब लोग अपने माइंड को इधर लगाइए, बैठ जाइए दामन को, बैठ जाइए दामन को, बैठिए। तो जल की मात्रा हमारे शरीर में, जल की मात्रा अधिक है और कम होता है तो चढ़ाना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर कम हुआ तो शरीर बिगड़ने लगता है, बीमार पड़ जाता है। या जल है इसलिए पसीने बाहर निकलते हैं, और पसीने बाहर निकलते तो बहुत सारे पसीने के साथ रोग भी बाहर निकलते हैं। शरीर से पसीना निकलना बहुत जरूरी है, अगर शरीर से पसीना नहीं निकलता है तो समझ लो वो रोग को इकट्ठा कर रहा है अंदर, एक दिन ब्लास्ट होगा। शरीर से पसीने निकलना बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम क्या हो रहा है, ऑफिस एसी, घर एसी, सारा कुछ एसी, गाड़ी एसी, ये बड़ी समस्या हो गई है। पसीने आना चाहिए, क्योंकि पसीने, लोग पहले काम किया करते थे तो पसीने आते थे जिससे उनका जीवन स्वस्थ होता था। गांव के लोग देखिए खेती में काम करते थे, स्वस्थ रहते थे, पहले के लोग हमेशा स्वस्थ रहते। आपने सुना है कि 50 साल बाद 100 साल पहले हॉस्पिटल नाम की कोई चीज थी नहीं था, आज तो घर सोसाइटी बाजू बाजू में हॉस्पिटल खुल रहे हैं, है कि नहीं, बाजू बाजू में हॉस्पिटल खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं। तो शरीर से पसीने निकलना चाहिए, इस और पसीने निकलता है इसका मतलब शरीर के अंदर जल है, अग्नि, तीसरा जो पंचभागूत में से अग्नि है जो कि हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में अग्नि है, बहुत तीव्र अग्नि है। एक्चुअली हम जो रोज 2-3 किलो खाते हैं ना, वो पचाता कौन है? अग्नि, जठराग्नि उसको बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं उसको। जब भी हम अंदर डालते हैं जो भी चीजें, अंदर जाके पचाता कौन है? अग्नि। इसलिए खाने के पहले बोला गया कि पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीते तो अग्नि बुझ जाती है और फिर हम खाना खाते तो अपचन हो जाता है, पचन नहीं होता है। खाने से आधा 45 मिनट पहले पानी पी लेना चाहिए, या फिर खाने के 40 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए, या तो पीना चाहिए तो गर्म पीना चाहिए ताकि अग्नि के साथ मैच हो जाए बराबर। तो अंदर जठराग्नि है जो कि पचाने के काम करता है, ठीक है। और चौथा तत्व है वायु। देखिए हमारा ये शरीर है ना, कफ पित्त वायु से बना हुआ है। आयुर्वेद में जो भी उपचार होता है ना, ये कफ पित्त वायु की मात्रा को देखा जाता है। हमारे शरीर में कफ कितना है, पित्त कितना है, वायु की मात्रा कितना है। एक कफ पित्त वायु जब डिसबैलेंस होते हैं ना, अनबैलेंस होते हैं जब ही ना, तो उस समय व्यक्ति को रोग होता है। और आयुर्वेद के अनुसार जो उपचार है ना, इसी को बैलेंस करते हैं, बस इसी को बैलेंस करते हैं। इंग्लिश दवाइयां क्या करती है, वो एक चीज को तो बैलेंस करती है, दूसरा समस्या कर देती है, दूसरा वो बाद में कुछ और दूसरे रोग आ जाते हैं। आयुर्वेद उपचार में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि दूसरा कुछ शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लाइफ स्टाइल ऐसी बन चुकी है कि वो आयुर्वेद चीजें बोलते हैं ना, केमिकल अंदर इतना डाल चुके हैं, हम डालते ही रहते हैं कि वो आयुर्वेदिक ना बहुत स्लो काम करता है, और इंग्लिश को इतना पावर दिया गया है वो तुरंत काम करता है। लेकिन समस्या उस दवाई से वो किडनी पे असर होता है, दूसरा क्या क्या बहुत दूसरी समस्याएं होती है, उसका साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। और विशेष करके शरीर में 9 द्वार है जहां से ये हवा अंदर बाहर जा ये होता है। तो इस प्रकार से जो चौथा तत्व है वायु, हवा, वो हमारे शरीर में है। आकाश, अभी आकाश कैसे है, देखिए हम जो बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं पता है, आकाश के कारण, नहीं तो मैं बोल नहीं पाता। जिसके अंदर ये आकाश शक्ति नहीं रहता है, आकाश का जो रूप है ना, वो गुण है जो है ना, वो शब्द है। आकाश का गुण क्या है, शब्द है। जिसके अंदर नहीं रहता वो व्यक्ति गूंगा हो जाता है, नहीं बोल पाता है। आकाश है इसलिए हम बोल पा रहे हैं, जिसके अंदर ये नहीं रहता है वो व्यक्ति बोल नहीं पाता है। तो इस प्रकार से पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच चीज से हमारा शरीर बना हुआ है, पांच चीज से। अभी समझ में आया कि पांचों चीज हमारे अंदर है। तो ये केवल हम ही नहीं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना, 14 लोक है, ब्रह्म लोक तक जितने भी जीव हैं, ब्रह्म लोक तक, चाहे वो स्वर्ग लोक है, तप लोक है, इत्यादि इत्यादि, ऊपर जाते जाते जो भी ब्रह्म लोक तक, जहां पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं, ब्रह्म लोक से पूरा 14 भुवन जितने भी, आ ब्रह्म भुवना लोका, इसी गीता में भगवान बताते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना, इस सारे 14 भुवन के लोग इसी पंच महाभूत से बने हुए हैं, चाहे देवी देवता ही क्यों ना हो, पंच महाभूत से ही बने हुए हैं आप ब्रह्म गुणा लोका, इसी पंच महाभूत से। लेकिन क्या होता है, हमारे शरीर में पृथ्वी और जल की मात्रा अधिक होने से हम यहाँ पे हैं, लेकिन अगर देवताओं के देखें तो देवताओं में अग्नि और वायु की मात्रा ज्यादा है, इसलिए वो आकाश में चल सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं। तो मात्रा का हेर फेर है, केवल अलग अलग लोगों के मात्रा का हेर फेर होने के वाले अलग अलग जगह पे स्थित है, लेकिन है यही पांच चीज शरीर के अंदर। ओके, तो ये जो भी है तत्व, ये सब भौतिक है। कुछ करना चाहिए आपको, क्योंकि सबका माइंड डाइवर्ट हो रहा है क्योंकि ये ऐसा विषय है ना, कथा रहता है तो चल जाता है माधव रूम में चले जाओ, रूम में वेस्ट है। तो इस प्रकार से ये जो भौतिक शरीर है, ये जो पंच महाभूत से शरीर बना हुआ है, इसको भौतिक बोलते हैं, क्योंकि भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है, इसलिए इसका सर्व नाश होता है, सत्यानाश होता है, इसका नाश होता है। अभी ये जो शरीर है, ये पंच महाभूत से बना हुआ है जो शरीर है ना, इसमें चेंजेस होते हैं, पग पग पे चेंज होता है, वो चेंजेस के बारे में थोड़ा हम देखते रहते हैं, परिवर्तन होता है। जैसे शरीर का जब जन्म होता है, बालक का जब जन्म होता है, तो उस समय छोटा बच्चा रहता है, तो पहला है जन्म, वो जन्म लेता है, ठीक है, उसके बाद उसका विकास होता है ना, उसका विकास होता है, वो बढ़ता है, और उसके बाद उसको पोषण होता है, पोषणता उसको प्राप्त होती है, ये तीसरा, पहला जन्म, दूसरा विकास, और तीसरा पोषण, और चौथा पोषण के बाद उसके बाद एक और शरीर की उत्पत्ति करता है वो, या जिसको हम बोलते हैं संतान उत्पत्ति, ठीक है, ये चौथा परिवर्तन, और पांचवा की फिर छह होने लगता है, जिसको हम बुढ़ापा बोलते हैं, जिसको बुढ़ापा बोलते हैं, फिर छह होने लगता है, और अंततः क्या होता है, नाश हो जाता है। ये छह परिवर्तन हर एक शरीर का होता है, जन्म लेता है, उसका विकास होता है, पोषण होता है, और उसके बाद संतान उत्पत्ति करता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर क्षय हो जाता है। ये छह परिवर्तन हर एक शरीर का होता है, ये भौतिक तत्व है, ये नाश होता है, ठीक। और यही जो शरीर है ना, एक्चुअली यही शरीर जो है हमारा दुख का कारण है। हम दुखी क्यों है, प्रश्न था ना शुरुआत में, दुखी क्यों है, ये शरीर ही हमारा दुख का कारण है एक्चुअली। ये जो पंच महाभूत से बना हुआ है शरीर है ना, यही दुख का कारण है। कुलशेखर आलवार कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर जो है ना, ये मंदिर के समान है, लेकिन कैसे मंदिर के समान है, व्याधि सत संधि जर्जरम, सत संधि है मतलब 100 जोड़ है इसमें, मुड़ता है ना जोड़ ज्वाइंट्स, लेकिन व्याधि ये रोगों से भरा हुआ है। शरीरम व्याधि मंदिरम सत संधि जर्जरम, रोगों से भरा हुआ है शरीर, और यही शरीर हमारे दुख का कारण है, यही शरीर हमारे दुख का कारण है। कोई कितना भी कहे नहीं मैं तो बहुत स्वस्थ हूं, बहुत स्वस्थ हूं, आप जाके बॉडी चेकअप कराइए, दो चार रोग तो निकल ही जाएंगे, फुल बॉडी का चेकअप कराइए, जाके देखिए दो चार निकल जाएंगे। कोई कितना भी स्वस्थ अपने आप को बोलता है, उसको चेकअप कराइए बॉडी, ये शरीर ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। एक बार की घटना है कि एक राजा बहुत बीमार पड़ गया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सीखने वाली स्टोरी है। एक राजा बहुत बीमार पड़ गया, और इतना बीमार पड़ा कि वैद्य को बुलाया गया, वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने चेकअप किया और चेकअप किया तो देखा कि सच में बहुत सीरियस है राजा। तो मंत्री को बोला उस वैद्य ने, देखो इसकी बीमारी तो बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन ठीक हो सकता है वो। बोला क्या तरीका है ठीक होने के लिए? बोला तरीका तो आसान है, लेकिन तुम ला पाओ तो। तो मंत्री ने बोला हम तो राजा के नौकर है भाई, बताओ हमको, राजा को जल्दी ठीक करना है, हमारा बॉस है वो। तो बोला कि देखो जो सुखी व्यक्ति है ना उसका कुर्ता लाके इस राजा को पहना दो और ये इसके जो भी दुख है, जो भी इसको रोग है वो मिट जाएगा। मंत्री ने बोला बस इतनी सी बात। तुरंत ही मंत्री ने सब सैनिकों को भेज दिया, जाओ ढूंढो कौन सबसे इस संसार में सुखी व्यक्ति है। सब मंत्री लोग ढूंढने निकल गए, सारे मंत्री ढूंढते ढूंढते ढूंढते, क्या तुम सुखी हो? जैसे हम बोलते हैं ना हाउ आर यू, तो फाइन बोलते हैं ना, लेकिन 10 मिनट पास में रहिए तो फाइन के बाद कुछ और चीजें निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। सारे सैनिक लोग जाकर पूरा ढूंढने लगे कि सुखी कौन है। हाँ, पूछते हर एक व्यक्ति को पकड़ के पूछते थे, नहीं तो वो कुछ न कुछ उसके जीवन में दुख रहता था। सब सैनिक ढूंढते सब वापस आ गए, बोले कि मंत्री जी कोई सुखी है ही नहीं इस जगत में, हमने पूरा राज्य ढूंढ डाला कि कोई सुखी है ही नहीं। मंत्री ने बोला क्या बात कर रहे हो? मंत्री ने अपना घोड़ा उठाया, बोला कि मैं ढूंढ के लाता हूं। निकला मंत्री ढूंढने के लिए, तो मंत्री ढूंढते जब देखा कि एक नदी के पास गया था, एक व्यक्ति स्नान करके गमछा पहने हुआ था और रुमाल को हाथ में लेके उड़ाते हुए गाना गाते हुए जा रहा था, है ना, करते ना जो बहुत गाना गाते हुए चलते हैं। नदी में स्नान किया, गमछा पहना हुआ था और हाथ में रुमाल लिया हुआ था, नचाते गाना गाते हुए जा रहा था। तो मंत्री ने देखा बड़ा बहुत प्रसन्न है। मंत्री ने देखा कि बहुत प्रसन्न है तो उसके पास गया, तुम सुखी हो? बोला अरे देख नहीं रहे, मैं परम सुखी हूं, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। बोला क्या बात कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था, हमने इतने टाइम से ढूंढ रहे ऐसे ही व्यक्ति को जो कि सुखी हो। तो बोला हाँ मैं परम सुखी हूं। तो बोला एक काम करो, तुम्हारा कुर्ता मुझे दे दो। बोला मंत्री जी ये कुर्ता नहीं है इसलिए तो सुखी हूं, कुर्ता नहीं है इसलिए तो सुखी हूं मैं, तो ये और कोई नहीं, ये जो राजा, जो राजा है ना वो और कोई नहीं, राजा क्या है ना हम है, मैं आत्मा वो राजा है। ये कुर्ता और कहीं नहीं है, ये हमारा शरीर है, उसके पास कुर्ता नहीं था इसलिए वो सुखी था, है ना। जब तक ये शरीर हमारे पास और इस शरीर से हम आसक्त रहेंगे सारे चीजें मैं अभी आगे डिटेल बताऊंगा, तब तक दुख का कारण है। मैं ये बात को बताना चाह रहा हूं कि शरीर सबसे बड़ा दुख का कारण है, सबसे बड़ा दुख का। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेते, बार बार माँ के गर्भ में जाते, बार बार जन्म लेते, ये 84 लाख योनियों में घूमते रहते। जब से इससे मुक्ति नहीं प्राप्त होगा ना तब तक वो व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा। जब तक ये आत्मा का जो रियल डेस्टिनेशन है उस जगह पे नहीं पहुंचेगा ये आत्मा, तब तक सुखी नहीं होगा, तब तक सुखी नहीं होगा। इस शरीर का अंत तभी होगा जब ये आत्मा अपने उसका जो स्वभाव है ना परमात्मा की सेवा करना, जब तक उसमें नहीं लगेगा तब तक वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, तब तक उसको ये शरीर धारण करते ही रहना पड़ेगा, तब तक धारण करते रहना पड़ेगा। तो ये शरीर ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो ये 5 तत्व को हमने अभी समझा कि किस प्रकार से ये शरीर 5 तत्वों से बना है, और उसके बाद एक स्थूल भौतिक है, और उसके बाद एक और तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व है जो कि मैंने बताया था कल कि शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, वो कौन सा है? मन बुद्धि अहंकार। ये भी सूक्ष्म तत्व है लेकिन ये भी भौतिक है, ये भी भौतिक है, सूक्ष्म तत्व है लेकिन भौतिक है। देखिए दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, मन बुद्धि अहंकार दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल इसका है, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन सबसे बड़ा रोल अंदर से काम कर रहा है वो। देखिए हमारा मन, हमें 3 चीजों के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सूक्ष्म शरीर जो है मन, देखिए बहुत छोटी वस्तु है, बहुत छोटा चीज है, इसलिए सूक्ष्म बताया गया है इसको, लेकिन इसकी गति जो है ना हवा से भी तेज है। मैं एक शब्द केवल बोलता हूं, अमेरिका, मन कहां गया कि नहीं? लेकिन अमेरिका जाने के लिए कितना टाइम लगता है? कम से कम 15-20 घंटे लगते हैं फ्लाइट से। मन गया ना, कभी नहीं गए फिर भी इमेजिन कर लिया ऐसा होगा अमेरिका, किया ना मन के अंदर, किया ना। ये मन जो है ना बहुत तीव्र गति है इसका, है बहुत छोटा तत्व लेकिन है बहुत तीव्र। केवल कुछ वर्ड नाम किधर का भी बोलो वहां तुरंत पहुंच जाता हो, इतना तीव्र है मन, इतना तीव्र है। बहुत सूक्ष्म चीजें है, हम छोटी सी कुछ चीज को, मान लो पेन को मैं पकड़ लेता हूं, पकड़ सकते, लेकिन मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही बहुत डेंजरस चीज है। डॉक्टर लोग का ऐसा मानना है, ऐसा कहते हैं कि ब्रेन जो है ना बुद्धि व्यक्ति का, वो पूरे शरीर को चलायमान करती है, पूरे शरीर को। लेकिन ये मन जो है ना एक्चुअली बुद्धि के ऊपर भी राज करता है। जब ये बुद्धि मन के ऊपर राज करने लगेगा ना, उस समय व्यक्ति कंट्रोल करने में थोड़ा सक्षम हो सकता है, थोड़ा से प्रयास कर सकता है। लेकिन ये मन जो है ना बुद्धि के ऊपर राज कर रही है। तो मन का जो, देखिए मन जो है ना, मन का तीन कार्य होता है, जो हमारे इस सूक्ष्म शरीर की जो बात कर रहा हूं, पहला तत्व तो उसमें मन, इसका तीन कार्य होता है कि वो क्या करता है, सोचता है, सोचना होता है, और अनुभव करता है, और इच्छा करता है। ये मन में तीन कार्य होते हैं, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, ये तीन कार्य मन का होता है। मन ये जो है ना विचार की धारा है, उसको नदी के समान तुलना किया गया है। जिस प्रकार से नदी अविरत बहती रहती है, उसी प्रकार ये मन के अंदर ना बहुत सारे इच्छाएं बहती रहती है। मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं बहती रहती है। देखिए सब्जी काट रहे हैं, घर में सब्जी काट रहे हैं, किसे काटते हैं सब्जी, चाकू से। सब्जी काटते काटते उंगली कट गया, दुख किसको होता है, मन को होता है। ये तो मन की चर्चा कर रहा है इसलिए मन बोल दिया क्या गेस करके, है? वास्तव में शरीर को दुख नहीं होता है, मन को दुख होता है, मन को दुख होता है। नहीं नहीं, दुख मन को ही होता है, क्योंकि इतना अटैचमेंट है उससे, दुख ही होता है मन। मैं बताता हूं आगे, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, अभी समझेंगे। हम खाते नहीं है, मान लो भूखा है, तो किसको तकलीफ होता है, मन को ही तकलीफ होता है। देखिए मैं कैसे इसे एक उदाहरण देता हूं, आप ध्यान से सुनिए, जो आपका प्रश्न है। आपको पता है कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे, महीनों महीनों भर तक नहीं खाते थे, फिर भी उनको कष्ट नहीं होता था, क्यों? क्योंकि वो तपस्या करके मन को वशीभूत कर लेते थे, और वशीभूत मन को कर दिया ना तो दुख नहीं होता था उनको। एक महीना तक नहीं खाते थे, कोई कोई योगी तो 6-6 महीना नहीं खाते हैं, फिर भी उनको दुख नहीं होता है। लेकिन हम एक घंटा नहीं खाए तो, दो घंटा, एक दिन नहीं खाए तो कितना तकलीफ होना, कितना दुख होने लगता है, कि सबको झगड़ा करने लगे, आज बनाया नहीं, उपवास हो गया, क्या क्या चीजें हो जाता है कि नहीं। लेकिन वही योगी जो तपस्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने मन को वशीभूत किया, तो महीनों भर तक उसको तकलीफ नहीं हुआ। तकलीफ किसको हो रहा है, मन को हो रहा है। उंगली कटता है, मन को तकलीफ होता है। कोई व्यक्ति गाली दिया, मैंने मान लो तो आपको गाली दिया, आपने मुझको गाली दिया, तकलीफ किसको होता है, शरीर को थोड़ी ना तकलीफ होता है। गाली दिया तो शरीर को तकलीफ होता है, मन को होता है तकलीफ। वही मन को जो दर्द हो रहा है ना, जो कि हम समझ रहे हैं कि हम जब तक ये आ सकती है ना आत्मा, आत्मा जब तक इस शरीर में रहकर अपने आप को ये शरीर मानता है, तब तक उस दर्द का अनुभव करता है वो। जब तक ये मानता है कि मैं शरीर हूं, तब तक उस दर्द का अनुभव करता है। और जैसे ही उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, केवल ज्ञान ही नहीं, उसको अनुभव करके अपने जीवन में जब उतार देता है, तो उसको दुख चला जाता है। जैसे मैं ये उदाहरण दिया ऋषि का, उस ऋषि का उदाहरण दिया ना, एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, हर एक जगह पे लागू कर सकते हैं। तो ये दुख जो होता है मन को होता है। तो ये मन जो है ना सबसे बड़ा घातक हमारे अंदर बैठा हुआ है। जो देखिए शास्त्रों में वर्णन है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोचे बांधाय विषया संगे निर्मुक्ता विषया मना। देखिए शास्त्रों में वर्णन है मन एवं मनुष्यानाम, मनुष्य का जो मन है ना, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष है, बंधन का भी कारण बनता है और मोक्ष का भी कारण बनता है। उसको वशीभूत कर लिया, उसको सही ट्रैक में लगा दिया, तो मोक्ष का कारण बनता है, परम सुख को देता है। लेकिन अगर उसको गलत चीजों में लगा दिया, तो वही बंधन का कारण बन जाता है, बहुत सारे दुख देता है ये मन। अनकंट्रोल मन है, जो अनकंट्रोल मन है ना वही सबसे बड़ा दुख लेके आता है हमारे जीवन में, अनकंट्रोल्ड मन। अभी इस मन को वश में करना है तो अपना प्रयास से हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस मन को वश में कर ही नहीं सकते हैं। भगवान गीता में बताते हैं मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मानवश करो, मन को मेरे में लगाओ वो वशीभूत होने लगेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन नहीं लगाएंगे तो अनकंट्रोल्ड ही रहेगा, क्योंकि हम अपने प्रयास से कर ही नहीं सकते हैं। तो देखिए ये जो मन है, जन्म के तुरंत बाद ये मन आता है, जन्म के तुरंत बाद, लेकिन जाता है सबसे लास्ट में, मृत्यु के समय, मरणासन नॉर्मल जिसको मृत्यु बोलते हैं, कोई कोई उसको है ना, कोई नॉर्मल मृत्यु प्राप्त करता है ना बिना हॉस्पिटलाइज घर के अंदर, तो मरणासन व्यक्ति को आप देखेंगे ना तो उस समय क्या होता है, उसका हाथ काम करना बंद कर दिया, आंखें देखना बंद कर दिया, मुंह से खाना बंद हो गया, कान से सुनना बंद हो गया, आंख से देखना बंद हो गया, ये सारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं अंत समय में, मरणासन के समय जब व्यक्ति मरता है तो। लेकिन मन जो है ना, मन के अंदर विचारधाराएं चलती रहती है, मन एक्टिवेट रहता है, और ये मन ना सबसे लास्ट में जाता है। इसलिए कहते हैं कि हम जीवन भर अगर मन को अच्छे कार्यों में लगाने का प्रयास करते हैं ना, क्योंकि हम अंत समय में, भगवान कहते हैं गीता में कि अंत काले चमामेव स्मरण मत्वा कलेवरम, अंत समय में जो मेरा स्मरण करके अगर इस कलेवर इस शरीर को छोड़ता है तो मेरे पास आएगा, लेकिन ये शरीर काम ही नहीं कर रहा, अंत समय आंखें देखना बंद कर दिया, क्या भगवान का दर्शन करेंगे, मुंह खाना बंद कर दिया, भगवान का भोजन प्रसाद भी नहीं पा सकते हैं, कान सुनाई दे कथा भी नहीं सुन सकते हैं। लेकिन जीवन भर अगर इस मन को अगर अच्छे कार्यों में लगाने का प्रयास किए तो अंत समय में यही मन उन्हीं चीजों को याद करेगा और उस व्यक्ति का परम गति होगा, समझे। तो ये मन जो है ना बहुत ही, आइए वेलकम, हरे कृष्ण। तो मन जो है ये व्यक्ति बहुत सूक्ष्म तत्व है लेकिन बहुत अहम भूमिका निभाता है एक शरीर के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर। प्राण प्रयाण समय कपवात पित्त, कपवात पित्त से रुद्ध हो जाता अंत समय में, लेकिन मन को अगर जीवन भर हमने अगर सही दिशा में लगाने का प्रयास किया है तो उस चीजें उस समय स्मरण आएगा। भगवद गीता में अर्जुन इस बात को कहता है, क्योंकि भगवान ने बार बार बोल रहे मन को मेरे में लगाओ, मन को मेरे में लगाओ, तो अर्जुन इस बात को कहता है कि प्रभु ये मन जो है ना इतना इसका गति तीव्र है, मैं अपनी गांडीव के बल को गांडीव के बल पे शक्ति पे मैं हवा को रोक सकता हूं, इतना मेरे में शक्ति है गांडीव के बल पे मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं मन को रोक नहीं सकता, मन को वशीभूत नहीं कर सकता मैं, ये मन की गति इतनी तेज है। तभी प्रश्न एक मन में चलता होगा, इस मन इतना डेंजरस है, अर्जुन स्वयं बोल रहा है कि मैं वशीभूत नहीं कर सकता क्योंकि इसकी गति इतनी तेज है, मेरे वश में नहीं है वो। तो प्रश्न ये कि फिर कैसे इस मन को कंट्रोल किया जाए, ये प्रश्न। तो मनः शास्त्रों में वर्णन है कि मनः त्रायति इति मंत्र, मन को अगर वश में करना है तो मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब मन, त्र मतलब त्रायते तारण, मनः त्रायते इति मंत्र, जब मंत्र को हम सहारा लेते हैं तो क्या होता है, ये मन को वशीभूत में कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। एक व्यापारी का मैं उदाहरण देता हूं, इस चीज पे मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मन को कैसे हमको कार्य में लगाना है, क्योंकि मन को अगर बिजी नहीं किया ना वो व्यक्ति को अधोगति तक लेके जाता है, सही ट्रैक पे सही जगह पे उसको बिजी करना है। एक व्यापारी शायद वापी का ही रहा होगा, भरत बाबू, भरत भाई आपके सही आजू बाजू का कोई रहा होगा, एक व्यापारी उसके पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा था, पूरा जिन और पैसे वालों का जीवन तो और इतना बिजी होता कि पूछिए मत, आप लोग तो बैठे हो कथा सुन रहे हो, उनके पास वो भी टाइम नहीं है, उनका भी और बिजी शेड्यूल होता है एक्चुअली, तो उसके पास धन संपत्ति बहुत था, बहुत बिजी था वो,
एक दिन उसके मन में ऐसा आया कि इतना धन संपत्ति मेरे पास और दिन भर मेरे को काम करना पड़ता है, दिन भर बिजी रहता हूं, कुछ ऐसा चीजें हो जाए कि एक काम ना अपने आप हो जाए, काम अपने आप हो जाए और मैं थोड़ा बैठ के आराम करूं, रेस्ट करूं, ऐसा उसने सोचा। तो उसने क्या किया, गुरु के पास गया। तो गुरु ने बोला देखो ये सही तरीका नहीं है, फिर भी उसके जिद करने पर गुरु ने उसको एक कुछ चीजें दे दिया, बोला कि ठीक है इससे जो तुम इच्छा करोगे वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। वो लेके आया, इच्छा ये किया कि भाई देखो मेरे को बैठना है, तुम दिन भर का काम मेरा कर लेना। उससे एक जिन प्रकट हो गया और वो जिन क्या बोला, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरा करूंगा लेकिन कंटिन्यू मुझे काम नहीं दोगे ना मैं तुमको खा जाऊंगा। तो इसने सोचा कि मेरे जीवन में ऐसा भी इतना सारा काम है, कहां इसको टाइम मिलने वाला है। लेकिन क्या किया उसने, उस जिन ने बोला कि काम दो मुझे, क्या करना है। बोला जाओ ठीक है खेती में काम करो, ये करो वो करो, सब बताता है रहा और सब काम उसका बनता जा रहा है। लेकिन वो जिन क्या करता था, 2 साल का काम 2 घंटे में कर देता था। अभी तो इसकी बुद्धि फेल होने लगी, अभी कितना कहां काम में लगाऊं इसको, क्योंकि वो काम करके तुरंत आता तो बोलता कि बताओ दूसरा काम नहीं दिखा जाऊंगा दूसरा काम बताओ नहीं दिखा जाऊंगा अभी तो। लेकिन बुद्धिमान था, वो बुद्धिमान था, उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने क्या किया, चलो मेरे साथ बैठो, गाड़ी में बैठाया, चलो चलो कहां क्या करना है बताओ जल्दी। वो बार बार यही बोलता था, जल्दी बताओ नहीं दिखा जाऊंगा। लेके गया खेत में, खेत में लेके गया और बोला कि एक काम करो, इस खेत में 500 फीट का गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा, उसे तुरंत गड्ढा 5 मिनट में गड्ढे खोद दिया। बोला आप क्या करना है, बोला आप एक बाम्बू उसमें गाड़ दो। बाम्बू भी गाड़ दिया, अब क्या करना है, मिट्टी डाल दो। मिट्टी पे डाल दिया, फिर अभी बाम्बू खड़ा हो गया। बोला एक काम करो अभी उसमें ऊपर चढ़ो, तो तुरंत ऊपर चढ़ेगा। अब क्या करना है, नीचे उतरो। अब क्या करना, ऊपर चढ़ो। अभी ऊपर नीचे चढ़ते उतरते जब तक मैं मना नहीं करूं तब तक ऊपर नीचे चढ़ते रहना उतरते रहना। अभी वो लग गया काम में, अभी मना करेगा तब रुकना है ना, ऊपर चढ़ रहा है नीचे उतर रहा है, वो काम में लग गया। ये जिन और कोई नहीं, हमारा मन है। बुद्धि का इस्तेमाल करके इसको अगर सही ट्रैक में लगा दिया ना, वो काम में लग गया ना सही जगह पे, तो सुखी सुख है। और ये जो व्यापारी और कोई नहीं, हम हैं। समझा। तो इस प्रकार से मन को असीभूत करना है। एक ही मात्र शास्त्रों वेदों में बताया गया कि मना त्रायते इति मंत्र, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि कौन सा मंत्र बता दीजिए, वो कल बताएंगे हम, कौन सा मंत्र है वो कल बताएंगे, सस्पेंस रखते हैं, कल बताएंगे वो कौन सा मंत्र है, ठीक है। लेकिन हम मन के विषय में थोड़ा ये समझे हम, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, पंच महाभूत और मन, 6 चीज हो गया, ठीक है। 10 तत्वों का वर्णन करना हमको, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार आत्मा और परमात्मा, ये 10 चीजों का हमको वर्णन करना। अभी क्या है, हमने 6 चीजों का वर्णन कर दिया। अभी 7वां चीज क्या है, बुद्धि, ठीक है। अभी बुद्धि का कार्य क्या है, बुद्धि का कार्य एक ही है, डिसीजन लेना। बुद्धि का कार्य डिसीजन लेना है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बुद्धि निभाती है। डिसीजन अगर गलत हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, बड़े बड़े समस्या क्रिएट हो जाती है अगर डिसीजन व्यक्ति सही नहीं लिया तो। कभी कभी वो डिसीजन न लेने, सही लेने के कारण कभी कभी उसका वो रोड पे भी आ जाता है, कंपनी बंद हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। डिसीजन सही होना चाहिए सब जगह पे। एक डिसीजन का कार्य जो है बुद्धि लेती है। देखिए किसी व्यक्ति को बोल दो आप सुंदर नहीं हो, तो बोलेगा ठीक है हमें, मैं सुंदर नहीं हूँ, है ना, मैं कुरूप हूँ। वो बोल, मान लो कोई बोलता है कि कुरूप हो आप, सुंदर नहीं दिख रहे हो, उसे ठीक है मैं कुरूप हूँ, बस खुश। लेकिन अगर कोई बोल दे कि आपके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धू हो तुम, तो क्या होता है, मैं गुस्सा हो जाता तुरंत। मतलब समझो कितनी महत्वपूर्ण चीज है बोल दिया कोई तुम बुद्धू हो तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, हा? बोल दिया कोई गधा हो, अरे मतलब एक छोटा सा बच्चा है, इसको इसके क्रूशांक कितना होगा, वो आता है, वो गलती से उसका नाम है केशव गुड़े, ठीक है। आईडी एक दो बार स्कूल से सीधा मंदिर में आया था, आईडी लगा हुआ था, तो मैंने उसका आईडी देखा तो उसमें गलती से केशव गधा लिख दिया था, गलती से हो गया था। तो मैं बोला कि ये क्या है, तुम गधा है क्या, तो उसको गुस्सा, नहीं गधा के, गधा क्यों बोला मेरे को, छोटा सा बच्चा है गधा बोला, ये सुनना कोई नहीं चाहता है, ये बुद्धि की भूमिका जो महत्वपूर्ण है। देखिए पांच छह फीट का आदमी इतना छोटा सा बुद्धि का इस्तेमाल करके इतने बड़े हाथी को वश में कर लेता है, है कि नहीं? बुद्धि का इस्तेमाल करके इतने बड़े हाथी को वश में कर लेता है, जिस हाथी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करके उस हाथी को भी वश में कर लेता है। ये बुद्धि का कार्य है डिसीजन लेना। निर्णय जीवन में सही होना चाहिए और सही एक कड़क वो निर्णय बराबर होना चाहिए। निर्णय जीवन में बराबर नहीं हुआ, अगर बुद्धि का इस्तेमाल बराबर नहीं किए तो व्यक्ति बहुत दुख को भोगता रहेगा, समस्या उसके जीवन में होता है। तभी प्रश्न है कि अच्छा निर्णय कैसे ले, ये प्रश्न उठता है कि अच्छा निर्णय कैसे ले, बुद्धि को कैसे तेज करें, क्योंकि अच्छा निर्णय तभी लेंगे जब बुद्धि तेज रहेगा। एग्जाम में अच्छा नंबर तभी आएगा जब बुद्धि तेज रहेगा। तभी इस बुद्धि को कैसे तेज करें, इस बुद्धि को कैसे तेज करें? तो बुद्धि को तेज करने के लिए एकमात्र उपाय इसी भगवद गीता में बताया गया, भगवान बताते हैं। याद रखिए सब लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो कोई भी हो, ये बुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में। बिजनेस हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, सब जगह बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किए तो सक्सेस नहीं मिलेगा, है ना? तो बुद्धि कैसे तेज हो या बुद्धि कैसे सही निर्णय ले, इसका भगवद गीता में भगवान बताते हैं। कहते हैं तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयान्ति ते। गीता में कृष्ण कहते हैं कि तेसाम सतत युक्त, जो सतत रूप से मेरा नित्य प्रतिदिन चिंतन कर लेता है, तो क्या कहते हैं और कैसा चिंतन करता है? प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निस्वार्थ भाव से अगर चिंतन कर लेता है तो भगवान क्या बताते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि मैं देता हूं। अब बताइए कि बुद्धि अगर भगवान ने दे दिया तो और क्या बचा उसके पास संसार की चीजों को जानने के लिए? ददामि बुद्धि योगम तम। मैं एक बात बताऊं, ये मेरा अहंकार नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। मैं 10वीं एक बार फेल हुआ और 11वीं के बाद पढ़ने का इच्छा ही खत्म हो गया, मतलब पढ़ाई नहीं। 11वीं में गया, एग्जाम भी नहीं दिया, दूसरे साल पास हुआ 10वीं में। लेकिन उसके बाद कृष्ण भावनामृत में आया। आपको लग रहा है ऐसा कि मैं बिना बुद्धि वाली बातें कर रहा हूं? कहां से आया, कहां से आया? गीता में भगवान बोलते हैं प्रीतिपूर्वकम तेसाम सतत युक्तानाम प्रीतिपूर्वकम, बुद्धि मैं देता हूं। आपको पता है कितने ऐसे साधु संन्यासी हैं जो कि बड़े बड़े कथाकार करते हैं और वो स्कूल गए तक नहीं है? स्कूल नहीं गए हो, कहां से बुद्धि प्राप्त हुआ उनको? ददामि बुद्धि योगम, तो भगवान इस बात को बता रहे कि मैं बुद्धि देता हूं उसको। और मेरा यही निवेदन है कि चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अगर बुद्धि को प्राप्त करना चाहता है, अपने बुद्धि को तीव्र बनाना चाहता है ना, नित्य प्रतिदिन प्रीतिपूर्वक भले से कुछ समय के लिए हो उसको भगवत चिंतन करना चाहिए। बुद्धि को तेज करना है तो, अन्यथा अपने प्रयास से नहीं हो सकता है। ये बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका है। 5 मिनट का स्मरण करो और इतनी सारी बुद्धि को प्राप्त कर लो और अच्छे अच्छे निर्णय भी होगा। अभी सोचिए कि एक व्यक्ति जो साधु संत बने हुए हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर भी पास में जाके उनसे पूछते क्या करना है, क्या करना है पूछने जाते हैं, बताइए? क्योंकि इस व्यक्ति को बुद्धि कौन दिया? भगवान ने दिया। अब ये किसी को गाइड करेगा तो भले से वो कोई इंजीनियर हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, गाइड करेगा तो उसका सब कुछ अच्छा होगा, सक्सेस होगा। तो बुद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत आसान और सही तरीका बताया गया है। इसको थोड़ा सा हम कल चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन हम आज का जो विषय है इसको तत्व तो है पूरा करते हैं। अभी ये जो देखिए शरीर जो हम देख रहे हैं, अभी ये जो शरीर दिख रहा है, इस शरीर को तुलना रथ के साथ किया गया है। शरीर रूपी रथ जिसमें आत्मा बैठी हुई है, ठीक है? आत्मा बैठी हुई ना, ये सब लोग तो मानते हैं ना। अभी ये तो क्लियर हो गया है ना कि हमारे अंदर हम शरीर नहीं आत्मा है, ये सबको क्लियर है ना, ठीक है? ये शरीर रूपी जो रथ है इसके अंदर आत्मा बैठी हुई है। अभी इस रथ में जो है ना 5 घोड़े हैं, है ना? वो ये देखे ना, इसमें 5 घोड़े हैं जो भगवान रथ को हाक रहे हैं ना, उसमें 5 घोड़े हैं, आप उस गीता में देख सकते हो। एक रथ है उसमें पांच घोड़े हैं, ठीक है। रथ जो है ना ये पंच महाभूत है, शरीर है, ठीक है, और उसमें जो बैठा हुआ है राजा वो आत्मा है, ठीक। और जो सारथी है जो रथ को चला रहा है वो सारथी कौन है, बुद्धि है, बुद्धि के साथ तुलना किया गया है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा नहीं तो समझ नहीं पाएंगे इसको। सारथी का तुलना बुद्धि से किया गया है। और उसके बाद अभी सारथी जो लगाम को पकड़ा हुआ है ना, अभी पांच घोड़े तो पांचों का लगाम पकड़ा हुआ है, ठीक है, लगाम को पकड़ा हुआ है तो जो रस्सियां है ना वो मन है, ठीक। और उसके बाद ये जो घोड़े है ना हमारे इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं। ये जो शरीर रूपी रथ है इसमें जो पांच घोड़े हैं ना हमारे पांच इंद्रियों के समान है, आंख नाक कान हाथ पैर इत्यादि, ये जो भी इंद्रियां है ये पांच घोड़े की तुलना इंद्रियों से किया गया है। तो अगर देखिए, अगर बुद्धि का, बुद्धि कौन है, जो सारथी है, जो ये लगाम को पकड़ा हुआ है उसको बुद्धि के साथ तुलना किया गया है। अगर वो बुद्धि, वो सारथी अगर उस लगाम को, उस बुद्धि से उस लगाम को, उस घोड़ों को कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, जो ये इंद्रियां है जितनी भी पांच घोड़े कहां भागेंगे, अलग अलग दिशा में भागेंगे। तो व्यक्ति का हालत क्या होगा जो रथ के ऊपर आत्मा बैठा हुआ है, भयंकर स्थिति हो जाएगा ना। इस बुद्धि रूपी जो सारथी है मन को द्वारा, मन को वश में करके, रस्सियां मन के समान है और इंद्रियां घोड़ों के समान है, अगर उससे बुद्धि से पकड़ के वो पकड़ा ना रहे, अगर बुद्धि से पकड़ा न रहे तो क्या होगा, जितने घोड़े उतने साइड भागेंगे। तो व्यक्ति का कितना भयंकर परिस्थिति हो जाएगा सोचिए। लेकिन क्या हो रहा है, यही यही समस्या है, दुख का कारण। अभी समझिए, बुद्धि से हम क्या करते हैं, बुद्धि से हम मन को कंट्रोल नहीं करते हैं, और मन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो इंद्रियां अलग अलग दिशा में भागती है, और अलग अलग दिशा में इंद्रियां जब भागती है तो व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। क्योंकि आंख बोलता है कि हमको अच्छा रूप देखना है, कान बोलता है कि बहुत सारे गाने सुनना है इत्यादि इत्यादि, जीवा बोलता है कि मुझे वड़ा पाव समोसा पिज्जा पास्ता खाना है ना। तो जितनी इंद्रियां है वो भागती है, बुद्धि के द्वारा अगर मन को कंट्रोल करके, मन को कंट्रोल करके अगर इस इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया गया तो अलग अलग दिशा में उस घोड़े की तरह भागेंगे और उसका भयंकर परिस्थिति हो जाएगा उस व्यक्ति का। तो इसलिए इस शरीर की तुलना उस रथ से किया गया है जिसके ऊपर आत्मा बैठी हुई है, और ये जो हमारी इंद्रियां हैं उस पांच घोड़े के समान है, और जो बुद्धि है सारथी है, उसमें जो लगाम है वो कौन है, मन है हमारा, ठीक। समझे, हमको बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल में करके इस इंद्रियों को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करके इंद्रियों को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए जिससे कि आत्मा मेरा, मेरा कल्याण बोलते हैं ना, मेरा कल्याण होना चाहिए। तो मेरा कल्याण कब होगा, जब बुद्धि से मन को वश में करके सही जगह पे मन को लगाएंगे तब जाके उस व्यक्ति को कल्याण होगा, तब जाके उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होगा, ठीक, क्लियर। ऐसा करेंगे तो घोड़े इधर उधर नहीं भागेंगे, ठीक है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन समस्या क्या हो गया पता है, राज किसका होना चाहिए, आत्मा का राज होना चाहिए, लेकिन राज क्या है इस शरीर के ऊपर, मन का है। मन का राज होने के कारण इसलिए दुख प्रतीत होता है हमको। आपका प्रश्न एक एक आएगा, मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। राज किसका होना चाहिए, आत्मा का राज होना चाहिए शरीर के ऊपर ना, मेरा राज होना चाहिए, मेरा, मैं कौन हूं, आत्मा हूं, मेरा राज होना चाहिए ना। लेकिन क्या हो रहा है, मन का राज है, मन का राज कर रहा है, तो फिर समस्या है ना। मन का राज है तो इसलिए मन बोल रहा है कि आज शराब पीते हैं, कल मांस खाते हैं, आज मूवी देखने जाते हैं, कल दमन जाते हैं इत्यादि इत्यादि, सारी चीजें मन का कहते हैं, सही है। लेकिन वही आत्मा का राज रहेगा, बुद्धि प्रधान रहेगा उस पर, तो क्या होगा, सही कार्यों में लगाएगा उसको, मन को, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो छठा सातवां ना, बुद्धि सातवां थी, ये सातवां तत्व। और भी चीजें मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। अभी आठवां तत्व वो क्या है, अहंकार। अहंकार, जब ये अहंकार शब्द बोलते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, गलत चीज है, गलत विचार आता है कि अहंकारी व्यक्ति है, ऐसा होता है ना, ये बहुत अहंकार करता है, अहंकारी है। तो तो ये देखिए, जब ये अहंकार की बात करते हैं ना, तो उस समय हमको सोचना चाहिए कि देखिए अहंकार दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध अहंकार और दूसरा है मिथ्या अहंकार। एक होता है रियल ईगो और दूसरा होता है फाल्स ईगो। रियल ईगो और फाल्स ईगो, फाल्स। तो अहंकार दो प्रकार का। देखिए ये अहंकार है क्या चीज, क्या करता है हमारे शरीर के अंदर रखे, जो मन बुद्धि तीन सूक्ष्म तत्व, उसमें से मन का चर्चा किया हमने, बुद्धि की चर्चा किया, अभी अहंकार। तो हमने दोनों की चर्चा किया, वो क्या क्या कार्य करते हैं मन बुद्धि। अभी अहंकार एक करता क्या है वो मैं बताता हूं आपको। अहंकार ना हमारी पहचान बताता है। अहंकार का कार्य है हमारी पहचान को बताना कि हम कौन है। तो अभी दिक्कत क्या है, दो प्रकार के अहंकार है। जब शुद्ध अहंकार रहता है तो वो व्यक्ति अपने आप को पहचानता, क्या पहचानता, कि हम आत्मा है। लेकिन यही जब फॉल्स, ये मिथ्या अहंकार जब वो व्यक्ति के पास रहता है, तो वो क्या बोलता है, ये मैं कौन हूं, शरीर हूं, और अपना झूठी पहचान देता है वो व्यक्ति। समझ में आया, वो झूठी पहचान देता है। जैसे उदाहरण देता हूं, इसका कार्य कैसा है। अहंकार का कार्य क्या है, हमारी पहचान को बताना। रात को सब लोग सोते हैं, सोते हैं कि नहीं, रात भर कोई घूमता है क्या, बैठा है कोई, भाई घूमता हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सुबह 2-3 बजे उठता हूँ, तो फिर मैं थोड़ा घूम के देखता हूँ। सोते हैं ना सब लोग रात को। सोने के बाद वो व्यक्ति भूल जाता है वो क्या है, सब लोग मानते हैं, मानते हैं ना सब लोग। सोने के बाद व्यक्ति बोलते हैं ना कि जब सो जाता है व्यक्ति तो मरे हुए समान है। सांस चले वो बात की बात है, लेकिन वो अपने आप को भूल जाता है, वो सोने के बाद अपने आप को भूल जाता है। सोते समय कोई गला भी काट के चले जाए कुछ पता नहीं चलेगा, चलेगा पता नहीं चलेगा। तो सोना एक तरह से बताया गया मृत्यु के बराबर हो जाता है। एक्चुअली सोते समय व्यक्ति अपने आप अपनी पहचान को भूल जाता है, लेकिन ये जो अहंकार तत्व है ना, जब वो व्यक्ति जगता है तो उसको बताता है कि तुम कौन हो भाई। और ये अहंकार जब मिथ्या होता है तो बोलता है कि तुम जो जो तुम रमेश हो, तुम इत्यादि इत्यादि, ये बताता है जब मिथ्या अहंकार होता है। लेकिन यही शुद्ध अहंकार जब रहता है तो क्या बोलता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। समझ में आया, अहंकार का कार्य है हमारी पहचान को बताना। अगर शुद्ध अहंकार है तो आई एम सोल, ये जो है ना रियल ईगो है। मिथ्या अहंकार क्या है, आई एम इत्याक्षिणी है ना, अपने मिथ्या अहंकार है। हमारा रियल अहंकार जो है कि हम आत्मा है, ये रियल शुद्ध अहंकार है, ये आत्मा तत्व। समझ में आया, अहंकार मतलब क्या, हमारी पहचान को जो बताता है। ये तत्व ना रहे ना तो सुबह उठ के हम पागलों जैसा घूमेंगे, क्योंकि अपनी पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि हम कौन है। भले से वो मिथ्या के रूप में पहचान दे रहा है या फिर रियल रूप में पहचान दे रहा है, लेकिन ये अहंकार तत्व अगर नहीं हो तो व्यक्ति पागल हो जाता है। ओ, उसका क्योंकि अपनी पहचान ही भूल गया हो, फिर वो पागल बन के घूमते रहता है, क्योंकि अपनी पहचान भूल गया हो। ते पागल जो हो जाते हैं ना, ये अहंकार तत्व है ना, एक टिस्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पहचान ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा समझ गया है, अहंकार आठवां तत्व। अभी नौवां तत्व क्या है, आत्मा महत्वपूर्ण तत्व। अभी तीन तत्व है जो कि स्थूल भौतिक सूक्ष्म थे, है ना। लेकिन अभी ये जो दो तत्व की बात करने जा रहे हैं हम, आत्मा और परमात्मा की, ये जो है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक तत्व है। आध्यात्मिक मतलब उसका कभी भी नाश नहीं होता है, मतलब आठ तत्वों का नाश होता है, लेकिन ये जो तत्व, दो तत्व है आत्मा और परमात्मा, इसका कभी नाश नहीं होता है। तो थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। आत्मा जिसका कभी भी नाश, कभी भी विनाश नहीं होता है उसका, आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। अभी जैसे कि हमने अलग अलग चीजें जाना कि पंचम महाभूत से बना हुआ है ना, पंच महाभूत से शरीर बना हुआ इत्यादि इत्यादि, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सारी चर्चा किया। अभी हम इस चीज को देते हैं कि आत्मा कैसे बना हुआ है। आत्मा भी तो किसी से बना होगा, तो आत्मा किस चीज से बना है। तो शास्त्रों में वर्णन है कि आत्मा जो कि सच्चिद आनंद से बना हुआ है। सत मतलब कि वो नित्य है, चित मतलब ज्ञानमय, और सच्चित और आनंद, आनंद मतलब आनंदमय। सच्चित आनंद से बना हुआ ये जीवात्मा है, आत्मा है। सच्चित आनंद से बना हुआ ये आत्मा है, ये नित्य है, जिससे उसका विनाश नहीं होता है, इस बात की पुष्टि होती है। सत मतलब नित्य, उसका विनाश नहीं होता है। अभी चित्त मतलब पूर्ण ज्ञानमय, ये आत्मा ज्ञानमय है। इतना याद रखिए कि हम कौन है, आत्मा है, तो ये आत्मा जो है ज्ञानमय है, इसके अंदर पहले से ज्ञान भरा हुआ है। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर हम मूर्ख क्यों है, ज्ञान पहले से भरा हुआ था, हम क्यों मूर्ख है? अगर ये ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञानमय है, चित्त पूर्ण रूप से है, इसके अंदर ज्ञानमय है, तो क्यों हमारे अंदर अज्ञानता है? क्योंकि ये जो अज्ञानता का लेयर है ना, अज्ञानता का लेयर उस आत्मा के ऊपर उस लेयर पड़ चुका है, अज्ञान रूपी लेयर। जब हम श्रवण करके सुन के गीता भागवत पाठ करके जब इस अज्ञानता जब दूर होती है ना, तो ऑटोमेटिक वो ज्ञान प्रकाश हो जाता है, ज्ञान पूर्ण रूप से अंदर भरा हुआ है। मैं क्या बोला अभी, ददामि बुद्धि योगम, तो भगवान बुद्धि देते हैं, ठीक है, भगवान बुद्धि देते हैं ना। भगवान क्या करते हैं, अपनी कथा कीर्तन से उस व्यक्ति का क्या करते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं। जो आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता रूपी लेयर है ना, उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको, पूर्ण रूप से बुद्धि प्राप्त हो जाता है, और कुछ नहीं करते है। हम कानों से जब सुनते हैं उनके विषय में, उनकी कथाओं को सुनते हैं, तो आत्मा के ऊपर जो लेयर लगा हुआ है ना, वो हट जाता है, और आत्मा पूर्ण रूप से ज्ञानमय है, वो प्रकट हो जाता है, सारी ज्ञान प्रकट हो जाता है, समझे? तो सच्चित ज्ञानमय है और आनंदमय है। अभी आत्मा पूर्ण रूप से आनंदमय है, तो प्रश्न उठता है कि हम किर कुछ दुख भोग रहे हैं? सेम चीज वही, क्योंकि अज्ञानता का लेयर है। जिस दिन से अज्ञानता का लेयर हट जाएगा, उस दिन से सुख मिलना प्राप्त हो जाएगा, उस व्यक्ति को सुख मिलना प्राप्त हो जाएगा। दुखी होता है व्यक्ति तो मंदिर आता है, जाता है भगवान से प्रार्थना करता है, मंदिर आता है, मंदिर आ कि उसको क्या होता है, केवल अज्ञानता दूर हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है, अज्ञानता दूर हो जाता है, और वो पहले से आनंद में है, अज्ञानता दूर हो गया था, अंदर ही आनंद भरा हुआ है, सुख अंदर ही भरा हुआ है, हम बाहर खोजने जा रहे हैं, ये समस्या है। हम ना जान के बाहर खोज रहे हैं, लेकिन अंदर भरा हुआ है सुख। अगर उस चीज को सही प्रोसेस कर दिया जाए तो सुख तो अंदर है। हम सुख धन संपत्ति में ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं, परिवार में ढूंढ रहे हैं, फैमिली में ढूंढ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, जो कि आज तक नहीं प्राप्त हुआ। सुख हमारे अंदर है, उसको समझना चाहिए, रियल आनंद, क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप ही आनंदमय है, अंदर है। ये अज्ञानता जैसे ही दूर हुआ, वो प्रकट हो जाएगा, ठीक है। आत्मा होती क्या है, हमने कुछ चीजें कल बताया था आत्मा के विषय में। देखिए, आत्मा जो है ना, परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश, आत्मा अणु है और परमात्मा विभू है, ठीक। आत्मा का साइज कितना होता है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता है ना, साइज क्या होता है। तो शास्त्रों वेदों में लिखा हुआ है कि बाल है ना, मेरा नहीं है, आपका है, तो बाल का एक एक बाल आप निकाल लीजिए इधर से। वेदों में वर्णन है कि एक बाल को निकालिए, और उस बाल का अग्रभाग, सबसे अग्रभाग मतलब सबसे ऊपर वाला भाग या टॉप में जो है वो वाला भाग को काट लीजिए, बहुत थोड़ा टुकड़ा हो गया, बाल इतना बड़ा है, अग्रभाग थोड़ा सा उसको काट लीजिए, ठीक है। तो अग्रभाग का और 1000 टुकड़े करिए, नहीं हो सकता है, यही आत्मा का साइज है, मतलब हम उसको माप नहीं सकते हैं, आत्मा को हम माप नहीं सकते हैं, आत्मा को। गीता में तो पूरा दूसरा अध्याय ही आत्मा के बारे में बताया गया है कि उसको माप नहीं सकते हैं, ये आत्मा का साइज है। बाल के बाल के अग्रभाग का, उस अग्रभाग के 1000वां टुकड़ा, क्योंकि पॉसिबल नहीं, तो ये जो है स्फुलिंग मात्र है, स्फुलिंग मात्र है। वो कहाँ रहती है अभी आत्मा, कुछ लोग बोलते हैं इधर रहती है, बुद्धि में रहती है, इधर रहती है, किधर रहती है आत्मा? आत्मा हमारे हृदय में रहती है, हार्ट में रहती है। आत्मा है इसलिए हार्ट पंपिंग में हो रहा है, पंप जो चल रहा है ना हार्ट का, वो आत्मा के कारण है। जिस दिन निकलती है पंप बंद हो जाता है, सब कुछ खराब। वो जो है आत्मा हार्ट में, हृदय में रहती है वो आत्मा, जिसके कारण हार्ट पंपिंग होता है। इसलिए सबसे बड़ी सर्जरी में कौन सी सबसे बड़ी सर्जरी है? हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे बड़ी सर्जरी बताया गया है, क्योंकि बहुत बहुत डेंजरस होता है वो, क्योंकि वो आत्मा निकल सकती है, कभी भी जा सकती है, तो व्यक्ति का जिधर ट्रांसफर किया है वो भी बेकार हो जाएगा, समझे ना? तो आत्मा जो कि हृदय में रहती है, आत्मा का गुण क्या है गीता में आप कभी पढ़िएगा, बहुत थोड़ा स्किप करता हूँ नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा मुझे, 9:30 है। तो आत्मा का है बारे में कि आत्मा का गुण क्या है भगवान बताते, न जायते मृते वा कदाचित नाम उत्तम, कि ये कभी मरती नहीं है, इसका कभी नाश नहीं होता है, इसको कभी नैनम छिंदन्ति शस्त्रादि, इसको कभी जला नहीं सकते है, इसको कभी भिगा नहीं सकते, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे लंबा बातें आत्मा के बारे में है। उसका कभी भी नाश नहीं होता क्योंकि वो पूर्ण आध्यात्मिक तत्व है, इसलिए उसका नाश नहीं होता है, ठीक। तो महत्वपूर्ण बात नहीं आत्मा के विषय में, ठीक है, कुछ समझे, थोड़ा बहुत समझे, समझे ना, ठीक है। अभी क्या हुआ कि आप सबको मालूम है कि सृष्टिकर्ता कौन है, ब्रह्मा जी, भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता बनाया। भगवान के शरीर से बहुत सारे अवयव, ये सारे पृथ्वी अग्नि जल वायु जो भी हमने पंच महाभूत इत्यादि चर्चा किया ना, ये सब कहां से निकलता है, महाविष्णु के रोम कुप से निकलता है, और ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं ना इन्हीं सब चीजों को लेकर वो पूरा तैयार करते हैं, जो स्ट्रक्चर है ना ब्रह्मा जी तैयार करते हैं इसको, तो उनका काम है, ब्रह्मा जी का और कुछ काम ही नहीं है। ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं ड्यूटी पे जाते हैं ही करते हैं, शरीरों का निर्वाण करते हैं और सोने जाते हैं तो नाश हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का आयु जो है ना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा है, वो कभी चर्चा करेंगे हम, वो हमारे सोच से परे, जैसे आत्मा सोच से परे हुआ ना, हमारे सोच से परे, कैलकुलेशन से परे है ब्रह्मा जी का एक दिन, समझे ना। तो केवल सुबह उठ के वो सृष्टि करते हैं। अभी ब्रह्मा जी ने क्या किया, क्योंकि भगवान ने उनको सृष्टि की रचना का दिया हुआ सौंपा हुआ है, सुबह उठ के वो क्या करते हैं, पंच महाभूत लेते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब लेते हैं, मन बुद्धि अहंकार भी लेते हैं, आठ तत्व लिया और आत्मा भी ले लिया, ये सारे लेकर क्या करते हैं, 9 तत्वों का शरीर बना देते हैं। तो ब्रह्मा जी तब देखते हैं कि अरे क्या हुआ, 9 तत्व फिट हो गए फिर भी ये चलायमान नहीं है, 9 तत्वों को फिट कर दिया लेकिन चलायमान नहीं है, अभी चल नहीं रही है। तब ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु मैंने तो पूरा फिट कर दिया, पूरा एकदम कंस्ट्रक्शन तैयार कर दिया, वो चलायमान नहीं है, चल ही नहीं रहा है। तो भगवान बोलते हैं क्योंकि मैं वहां पर नहीं आया। तब भगवान अपना एक विस्तार करते हैं जिसको बोलते क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में उस आत्मा के बाजू में आकर बैठ जाते हैं, पर आत्मा के बाजू में आकर जैसे ही परमात्मा के रूप में भगवान बैठते हैं ये शरीर चलायमान हो जाता है, समझे, मतलब आत्मा भी बिना परमात्मा के चलायमान नहीं होती है, परमात्मा के रूप में आकर वो भी बाजू में बैठ गए हृदय में, इसलिए कहते हैं ना सबसे नजदीकी अगर हमारा मित्र है तो वो कौन है, भगवान, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, क्योंकि आत्मा है बाजू में परमात्मा है और वो इंतजार कर रहे हैं कब वो मेरे पास आए, कब मेरे तरफ देखे, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, न जाके दूसरे जगह फंसे हुए। परमात्मा के रूप में जब आए भगवान तब ये शरीर चलायमान हो गया, ठीक है। 9वां तत्व कौन सा, आत्मा। अभी परमात्मा के विषय में आपने माता जी कल पूछा था परमात्मा के विषय में, अभी सुनिए ध्यान से। परमात्मा जिसको हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं या सुपर सोल कहते हैं, है ना, ये परमात्मा का, ये जो उसका स्थान कहाँ पे है, जीवात्मा का स्थान हृदय है और परमात्मा भी जीवात्मा के बाजू में आके बैठते हैं, ठीक है। संसार में ऐसी धारणा है कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा अगर परमात्मा का ध्यान करती है तो वो भी परमात्मा बन जाती है, सोहम अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि सब चलता ना, सोहम 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 सोहम, ऐसा नहीं है। आत्मा कभी भी परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा नहीं बन जाएगी, नहीं बनती है। ये तो ऐसे हो गया जैसे कि मैं बोलूं बिल गेट्स बिल गेट्स बिल गेट्स, हाँ, तो क्या हम, मैं बिल गेट्स बन जाऊंगा, बन सकता हूं, हाँ? तो ये जो सोहम सोहम है ना, ये तो गड़बड़ वाला चीज है। कभी भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता है, कभी भी नहीं बन सकता है, कि उसका स्थान अलग है परमात्मा का स्थान अलग है, कभी भी वो परमात्मा नहीं बन सकता है, ठीक। हाँ एक चीज जरूर हो सकता है, प्रभुपाद जी बताते हैं इस बात को, हमारे परंपरा के अंतर्गत प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आत्मा परमात्मा का ध्यान करता है, बार बार ध्यान करता है, बोलता है, तो परमात्मा तो नहीं बनेगा लेकिन महात्मा जरूर बन जाएगा, महात्मा जरूर बन जाएगा। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा ये हृदय में उपस्थित है। अभी गुण देखिए, ये एक्चुअली ये धारणा इसलिए भी बनती है क्योंकि क्या होता है, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, ठीक। आत्मा परमात्मा के अंश होने के नाते उसके अंदर जो गुण है ना वो समान है। गुण की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, समुद्र, समुद्र का जल और समुद्र का एक बूंद, समुद्र का जल लेबोरेटरी में टेस्ट करो तो जो भी उसके अंदर तत्व पाए जाएंगे वही एक बूंद के अंदर भी पाए जाएंगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका ही अंश है, समुद्र का ही अंश है, वो बूंद भी है। तो गुण के दृष्टिकोण में समान है लेकिन मात्रा के दृष्टिकोण में इस बूंद को, आपके पास तवा है कि नहीं डोसा बनाने का, है ना? है ना? तवा, तवा ही बोलते ना, क्या बोलते हैं है? तवा ही बोलते हैं ना। गरम तवे पे इस बूंद को डालो तो क्या होगा, पनपन मन करके खत्म, लेकिन समुद्र को डाल दो तो वो तवा डूब जाएगा, समझे? गुण की दृष्टिकोण से दोनों समान है लेकिन मात्रा के दृष्टिकोण से अलग है। आत्मा और परमात्मा दोनों आध्यात्मिक तत्व है लेकिन गुण के दृष्टिकोण से समान है और मात्रा के दृष्टिकोण से अलग अलग है। परमात्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, आत्मा जो है परतंत्र है। परमात्मा को कर्मबंधन नहीं लगता है लेकिन आत्मा को लगता है कर्मबंधन। ये सारे चीजें हैं, बहुत बातें हैं। अभी देखिए, आत्मा जो है परमात्मा का पुत्र है, उसका ही अंश है। गीता में भगवान बताते हैं, ममय वांसे जीवलोके जीव भूता सनातना। आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है। आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा है, परमात्मा है। मामा इस बात को स्वयं भगवान बताते हैं, मैं मान से जीवलो के जीव भूता सनातना, वो मेरा पुत्र है। अभी पुत्र का क्या कर्तव्य है? पुत्र का क्या कर्तव्य है? पिता की सेवा करे, ये पुत्र का कर्तव्य है। तो जब तक ये जीवात्मा अपने पिता की सेवा नहीं करता है या परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा की सेवा नहीं करता है तब तक वो दुखी रहता है। जिस दिन से सेवा करना प्रारंभ किया उस दिन से उसको सुख प्राप्ति होने लगेगा, ठीक। तो वास्तविक स्वरूप जो है आत्मा का वो परमात्मा की सेवा करना। एक चीज और, थोड़ा से और बुद्धि को थोड़ा ये कर लो, एक चीज और मैं समझाता हूं, बहुत सुंदर चीज है, आप ध्यान से सुनना। ये शरीर की तुलना कंप्यूटर से किया गया है, मैं कर रहा हूं कंप्यूटर से तुलना, ठीक है। आपने नया कंप्यूटर खरीद के लाया है, घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है ना, ठीक है। सुंदर सा आपने कंप्यूटर खरीद के लेके आया। कंप्यूटर में जो दो चीज होता है, क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर। सबको पता है, सबको पता है, सब बुद्धिमान बैठे हुए यहां पे, वाह। कंप्यूटर में दो पार्ट होता है, एक हार्डवेयर होता है जो कि दिखता है, है? दिख रहा है, ये सारा हार्डवेयर है ना, दिख रहा है। और इसके अंदर एक चीज है जो कि दिख नहीं रहा है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ये जो कंप्यूटर है ना, जो हार्डवेयर है, ये पंच महाभूत है, ये शरीर है, और शरीर है कंप्यूटर क्या हो गया? शरीर है। और इसके अंदर जो सूक्ष्म तत्व है, जो सॉफ्टवेयर है, वो क्या है? मन बुद्धि और अहंकार, जो कि दिख नहीं रहा है। मन बुद्धि अहंकार दिखता नहीं है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर नहीं दिखता है, हार्डवेयर दिखता है, कितना सुंदर लग रहा है ना, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं दिखता है, समझ गए? शरीर कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार जो अंदर एक शरीर है वो कौन सा है? सॉफ्टवेयर है, समझे? इतना क्लियर है, ठीक है। मन ये सॉफ्टवेयर दिख नहीं रहा है लेकिन काम कितना बड़ा करता है, अगर वो नहीं रहे तो चले ही नहीं। काम कितना बड़ा कर रहा है, दिख नहीं रहा है लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहा है। इसी प्रकार हमारे अंदर मन बुद्धि अहंकार वो दिख नहीं रहा है लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहा है वो, ठीक। अभी चलो, हार्डवेयर ये शरीर हो गया, सॉफ्टवेयर क्या हुआ? मन बुद्धि अहंकार, ठीक है, यहां पे होल्ड रखो अभी, ठीक है। अभी दोनों चीजें है, हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है, दोनों चीजें है, लेकिन अगर पावर ना हो तो पावर ना हो तो क्या होगा? सुंदर सा हार्डवेयर भी दिख रहा है और सुंदर सा अच्छा खासा सॉफ्टवेयर भी है, हाँ इतना अच्छा, इतना पैसा में खरीद के लाया और एकदम केवल, लेकिन पावर ना हो तो केवल वो मॉडल के रूप में दिखना है, कुछ काम का नहीं हो। पावर का कितना वैल्यू है कि नहीं? पावर के बिना नहीं चलता। ये जो पावर है ना, यही है आत्मा और परमात्मा। आत्मा ये प्लग पॉइंट जो है ना, यहाँ नहीं है क्या? इधर है मुझे कुछ भी पता नहीं वहां है कि नहीं इसलिए बोलता नहीं घर मेरा नहीं, घर नहीं मंदिर है, सबके पास अपना पड़ा चाबी रखो, इधर आके अपना भजन इत्यादि जो किया जो सीखे वो किया करो, इधर ना ओपन, कोई कोई चीजें यहाँ पे गुप्त रूप से रखी नहीं है, ओपन है सबके लिए। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि माता जी के पास आ भी रहता है, माता जी के पास आ भी रहता है, कभी भी कोई भी आके आपको मेडिटेशन करना है तो कर सकते हैं, मैं दिन भर नहीं रहता हूँ कभी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं इसके लिए ये सब सारे चीजें किया, इतना एटमोस्फियर ना यही सोच के मैं बनाया था जो कि आज फलीभूत हो रहा है, और कोई दूसरा रीजन नहीं था, कोई दूसरा रीजन नहीं था, नहीं तो फिर क्यों क्यों करता है समय? केवल एकमात्र यही कार्य करने के लिए किया था जो कि आज सफल हुआ। वो नहीं कर रहा था इसलिए एक दिन आग लग गया था क्योंकि वो उद्देश्य बनाया था, वो नहीं कर रहा था इसलिए आग लग गया। भगवान ने इंटेंशन था, किसी उद्देश्य से बनाया तुम इंटेंशन था, इसलिए फिर मैंने उसके बाद प्लान किया कि चलो अभी करना है, चलो ठीक है जो भी है। हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है, पावर नहीं है तो कुछ काम का नहीं। ये पावर में दो चीजें हैं, ये पावर जो है वो आत्मा और परमात्मा के रूप में, लेकिन आत्मा क्या है? प्लग पॉइंट है, प्लग पॉइंट। और परमात्मा क्या है? पावर हाउस है, जनरेटर, जहां से बिजली आ रहा है। अगर परमात्मा के पास से अगर वो शक्ति नहीं आए तो इसमें कितना भी खोदो, कितना भी कुछ लगाओ, स्क्रू ड्राइवर मारो, उसमें पावर आएगा नहीं आएगा ना? मतलब आत्मा को शक्ति कहां से मिल रहा है? परमात्मा से मिलता है। अगर परमात्मा शक्ति नहीं दे तो बेकार हो जाएगा, कुछ काम का रहते हुए भी सुंदर सा दिख रहा है प्लग पॉइंट इत्यादि, रहते हुए बेकार। तो पावर हाउस जहां से पावर आ रहा है वो परमात्मा है, और एक प्लग पॉइंट जो है आत्मा है, और एक आत्मा के अनुसार फिर बाद में हमारा शरीर चलायमान होता है, जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब चलने लगता है। ठीक, तभी क्या क्या सिद्धांत यहां पर प्रस्तुत हुआ कि परमात्मा के अनुसार कोई भी चीजें चलायमान नहीं हो सकती है, वहीं से पूर्ण रूप से शक्ति आती है, परमात्मा से ही है ना, परमात्मा से पूर्ण रूप से शक्ति आती है। ठीक, तो अभी एक एक सिद्धांत है जो कि कल मैं इससे चर्चा कर रहा था। एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? कि ईश्वर के बिना पत्ता भी हिलता नहीं, सब लोग को मालूम होगा, ईश्वर के बिना पत्ता भी, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है ना, ये जगत सिद्धांत है, सब लोग बहुत चर्चित है ना। तो एक प्रश्न है मेरा, अगर ईश्वर के बिना, हाँ ईश्वर के बिना अगर पत्ते नहीं हिलते हैं, इसका मतलब क्या? क्योंकि अभी हमने देखा कि पावर हाउस से जब तक पावर नहीं मिलता है तब तक एक प्लग पॉइंट काम का नहीं है, है कि नहीं? कुछ काम का नहीं, जब तक परमात्मा से शक्ति आत्मा को नहीं मिलता है तब तक आत्मा कुछ काम का नहीं, वो चलायमान नहीं हो सकती है कि नहीं? आप आ जाएगा आगे बढ़ जाए, उधर बैठ जाए। तो परमात्मा से जब तक शक्ति नहीं मिलता आत्मा को तब तक कुछ कार्य नहीं कर सकता है ना। तो अभी ये बात को मैं बता रहा था कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मेरा एक प्रश्न है कि जो इतने बड़े आतंकवादी इतने बड़े 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 बम फोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? परमात्मा से शक्ति आ रहा है? कौन करा रहा है? मैं चर्चा कर रहा था आपके साथ ना थोड़ा सा, मतलब कि भगवान, क्योंकि उनके इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ये जितने भी आतंकवादी लोग हैं जितने भी बम फोड़ रहे हैं, मतलब ये भगवान की इच्छा के अनुसार तो कुछ नहीं होता है, वही करवा रहे हैं, मतलब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं हम। देखिए, जो ये परमात्मा है, आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है, ममय वांसी जीवलोके जीवभूत सनातन भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, ठीक है, लेकिन आत्मा का अंश तो है, लेकिन भगवान ने क्या किया है, परमात्मा ने क्या किया ही, इस आत्मा को एक स्वतंत्रता दिया हुआ है। वो स्वतंत्रता क्यों दिया पता है? क्योंकि वो प्रेम कर सके, क्योंकि प्रेम का प्रेम तभी व्यक्ति कर सकता है जब उसके पास स्वतंत्रता हो। गला पकड़ के मैं बोलूंगा आप मेरे से प्रेम करो, करोगे आप? नहीं ना। स्वतंत्रता से ही प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। तो भगवान चाहते कि जीव मेरे से प्रेम करे, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता दिया जीव को, स्वतंत्रता दिया हुआ है। अभी ये जीवात्मा जब स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो बम फोड़ता है, और जब उसका उपयोग करता है तो पिता की सेवा करता है, परमात्मा की सेवा करता है। समझ लिया? इसलिए ये भी सिद्धांत बराबर है कि ईश्वर ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता है, ये बराबर है। लेकिन वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग जब करता है तो वो आतंकवादी बन के बम फोड़ता है ना। जैसे मैंने क्या बोला, आत्मा प्लग पॉइंट के समान है, यही बोला ना। और जो पावर हाउस है वो परमात्मा के, वहां से शक्ति आ रहा है, इसलिए प्लग पॉइंट चल रहा है। अभी यहां पे प्लग पॉइंट है, आत्मा के पास स्वतंत्रता है, ठीक है। वो दुरुपयोग करके यहां पे क्या चाहिए, एसी चाहिए, वो हीटर भी लगा सकता है कि नहीं। स्वतंत्रता का दुरुपयोग, उसके पास स्वतंत्रता है, यहां पे चाहिए ठंडा वातावरण चाहिए तो उसको गर्म भी कर सकता है, वहां पे हीटर लगा सकता है, एसी के बदले हीटर भी लगाएगा, वो स्वतंत्रता उसके पास है। अगर वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो गलत कार्य करता है, और उपयोग करता है तो पिता की परमात्मा की सेवा करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये 10 तत्वों की चर्चा हमने की, पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, आत्मा और परमात्मा। क्लियर हुआ आपका प्रश्न? ठीक है, अभी थोड़ी सी कुछ चीजों को हम चर्चा करके खत्म करते हैं। कितना समय होगा? 10:45। अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम 5-10 मिनट और लेते हैं आपका। जैसे कि मृत्यु आती है तो क्या होता है, क्योंकि एक सनातन सत्य हमारे जीवन में कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, ये सनातन सत्य है कि नहीं। हर व्यक्ति क्या करता है, प्रति सेकेंड, प्रति मिनट, प्रति महीने, ये सब क्या हो रहा है, उसका जीवन अवधि कम हो रहा है और मृत्यु की ओर अग्रसित हो रहा है। इसलिए जन्मदिन पे हम जो खुशियां मनाते हैं, एक्चुअली हमारा कम हो गया, उतना दिन कम हुआ ना, उतना दिन हम मृत्यु की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। तो पग पग पे सनातन सत्य है कि शरीर धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है शरीर, है कि नहीं। तभी मृत्यु के समय होता क्या है, मृत्यु के समय यह होता है कि जैसे कि कोई ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है ना, अभी उसको गाड़ी चेंज करना है, गाड़ी चेंज करना तो क्या करता है, वो दूसरी गाड़ी में इस गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलने से पहले वो क्या करता है, अपना पर्स, अपना मोबाइल, अपना चश्मा इत्यादि सब गाड़ी में से ले लेता है और क्या करता है, दूसरे गाड़ी में चला जाता है। इसी प्रकार वो ड्राइवर जो है आत्मा के समान है, अभी ये शरीर जैसे ही पुराना हुआ, छीण हुआ, अभी उसमें से वो निकलता है, लेकिन निकलते समय क्या लेके निकलता है, मन बुद्धि अहंकार, ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, इसको लेके बाहर निकलता है, इसको लेके बाहर निकल के वो क्या करता है, दूसरे शरीर को धारण करता है। वो कर्म के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार, ये कर्मों का जो सिद्धांत और एक बड़ा विषय है, कर्म के अनुसार उसको फिर नया शरीर प्राप्त होता है। वो शरीर कुछ भी हो सकता है, 84 लाख योनियों में से, कर्म के अनुसार वो तय होता है। शरीर पुराना हो गया तो ड्राइवर जो आत्मा है वो मन बुद्धि अहंकार को लेकर वो क्या करता है, दूसरा शरीर धारण करता है, जिसको पुनर्जन्म, वो पुनर्जन्म हो जाता है उसका। इसलिए कभी कभी मन बुद्धि अहंकार वही है, इसलिए कभी कभी पुनर्जन्म की बातें याद आ जाती है, या कभी कभी स्वप्न में हम पुनर्जन्म की बातें देखते हैं, स्वप्न में पुनर्पिछले जन्म की भी बातें चलती रहती है, क्योंकि स्वप्न में ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं कि हमने कभी देखा नहीं है, वो अभी कभी ऐसा किया नहीं, ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं हम। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि अहंकार वही है पिछला वाला, इसलिए दूसरा जब शरीर प्राप्त होता है तो इस प्रकार के सीन होता है। ये पुनः ये मृत्यु, ये शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। अभी एक जीव हमारे जीवन में ये रोज एक घटना घटता है, कौन सा, स्वप्न वाला, स्वप्न वाला घटना ये घटता है। स्वप्न है क्या, देखिए बुद्धि, और हमने तीन चीज की चर्चा किया, सूक्ष्म शरीर वो क्या है, मन बुद्धि अहंकार। बुद्धि और अहंकार जब सो जाते हैं ना, इसको सोना बोलते हैं। मन सोता नहीं है, हम जो सोते हैं ना तो बुद्धि और अहंकार सोता है, लेकिन मन सोता नहीं है, इसलिए स्वप्न आते हैं। इसलिए स्वप्न आना ये अच्छी बात नहीं है, सही निद्रा नहीं माना जाता है, मन सोता नहीं है, और मन पिछले जन्म का है, इसलिए पिछले जन्म की बहुत सारी यादों को स्वप्न के रूप में वो डिस्प्ले प्ले करता रहता है ये मन। समझ में आया? तो निद्रा देखिए, और सही रूप में व्यक्ति जब सो जाता है ना, सोते समय बुद्धि और अहंकार सोता है ठीक, लेकिन सही रूप में अगर सो गया जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, उस समय मन भी सो जाता है। मन भी सो गया तो पूर्ण रूप से मृत्यु, वो मर गया, ये स्वप्न अवस्था। तो इस प्रकार से जो आत्मा का ज्ञान, देखिए आत्मज्ञान जो है, हमने जो कल भी चर्चा किया और आज भी पूरे डेढ़ घंटे में हमने जो चर्चा किया, इस ज्ञान को जो समझ लेगा, आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है, उसके जीवन में रियल आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, आनंद की अनुभूति। जिसको हमने पहला हमारा प्रश्न था ना, सुख की खोज, कैसे सुख प्राप्त हो, यही जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को, उस दिन से उसके जीवन में सुख प्रारंभ होता है, उसी दिन से वो सुखी होता है ठीक है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए ये सुख हमारे अंदर ही है, आत्मा जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, अभी हमने चर्चा की, आनंदमय है, ज्ञानमय है ना। जैसे कि एक आपने मृग को देखा है, मृग या चिड़ियाघर में तो देखा होगा ना, मृग को वो दौड़ता रहता है, हमेशा भागता रहता है वो, क्यों पता है, उसके नाभि से सुगंध आता है, लेकिन उसको पता नहीं वो सुगंध कहां से आ रहा है, और उस सुगंध को भागते रहता पाने के लिए, वो बड़ा परेशान रहता है पूरा जीवन भर। इसलिए कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है ना, राजा दशरथ इत्यादि जो बड़े बड़े राजा, इस मृग का शिकार क्यों करते थे, मृग का शिकार जब बेचारा बहुत परेशान रहता था वो, क्योंकि वो सुख की खोज कर रहा, उस सुगंध को पाने की प्रयास कर रहा, और दौड़ रहा है पूरा जंगल, परेशान हो रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि उसका जो सुगंध है उसके ही नाभि से निकल रहा है, उस मृग के नाभि से सुगंध निकल रहा है, उसको नहीं पता है। इसी प्रकार ये आत्मा जो है परम आनंदमय है, आनंद भरा हुआ अंदर, जिस दिन हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे और हम ये समझे कि हमें शरीर नहीं हम आत्मा है, उस दिन से परम सुख की प्राप्ति होने लगेगी, कहीं और जाना नहीं है ढूंढने के लिए, हमारे पास ही वो आनंद, हमारे पास ही वो सुख है। इसलिए आत्मज्ञान जो है ना परम जरूरी है, इस आत्मज्ञान को समझकर हमको परमात्मा की भगवान की सेवा करना चाहिए। सवय पुंसा पर धर्म तो भक्ति रथो चले, इस प्रकार के परमात्मा के विषय में, ये 10 तत्वों के विषय में आज ये चर्चा खत्म किए। अभी कल का जो चर्चा है ना, वो जो परमात्मा वो भगवान वो कौन है, और भगवान है तो हमारे जीवन में उसका क्या रोल है, और ठीक है तो अपना रहे मैं अपना रहूं क्या प्रॉब्लम है, इस सारे चीजों के विषय में हम चर्चा कल करेंगे कि भगवान कौन है, हमारे जीवन में भगवान का क्या रोल है, हमको भगवान के क्यों सेवा करना चाहिए, वो है कि नहीं है, या फिर ऐसा ही समाज में डराने फैलाने के लिए भगवान शब्द को इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीजों की चर्चा हम कल करेंगे ठीक है। तो अभी देखिए कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है, तो हम आज और कल दोनों दिन दीपदान करेंगे, मैंने आप सबको मैसेज भी किया था। तो ये कार्तिक की बहुत महिमा है, एक्चुअली शास्त्रों में ये 12 महीने होते हैं ना, सब लोग जानते हैं 12 महीना 13 महीना होता है, 12 ही होता है ना। तो 12 महीने में से 2 महीनों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, एक है सावन महीना, दूसरा है कार्तिक महीना। इस कार्तिक महीने में विशेष करके भगवान दामोदर को, भगवान को दीप दान करने की बहुत महिमा है। एक्चुअली समय नहीं है ना तो मैं कुछ इस महिमा को बताता, लेकिन आप सार रूप में यही समझिए आप, और मैं देखता हूँ कल जल्दी अगर समाप्त हो गया ये जो भगवान वाला प्रसंग है, तो हम इस बात को कल चर्चा करके बताएंगे कि कितनी महिमा है, लेकिन आज इसको बताने जाऊँगा तो शायद 15-20 मिनट और चला जाएगा, इसलिए नहीं बताता हूँ। लेकिन इतना ही समझिए कि कार्तिक महीने में भगवान की अनंत लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं हुई है, बहुत महत्वपूर्ण लीलाएं हुई है, गोवर्धन लीला हुआ है, माखन चोरी के लिए बहुत सारी लीलाएं किया हुआ उन्होंने, और साथ साथ में ये जो यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं ना, यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही है, उखल में बांध रही है, ये लीला भी इसी मंत्र में हुआ है ठीक है। तो वो लीला के विषय में थोड़ा सा हम कल सुनेंगे, लेकिन इस महीने में यशोदा दामोदर को इस रूप में भगवान को बांध रही जो यशोदा मैया बड़े प्रेम से या गुस्सा से, सारा चीज हम कल चर्चा करेंगे, तो इनको दीप दान करने की बहुत महात्मा है, और दीप दान करने की भी बहुत महात्मा है, और दूसरे को अपने घरों में बुलाकर दीप दान करवाने की भी बहुत महात्मा है। तो दीप दान पूरे महीने, एक्चुअली पूरे महीने करना चाहिए, आप अपने अपने घरों में डेली दीप दान करिए ये महीना पूरा, ऐसा नहीं केवल दीपावली को ही सजाना है, पूरे महीने पूरे कार्तिक वर्ष दीपदान करिए, इसकी महिमा थोड़ा हम कल बताएंगे, लेकिन आज हम इस दीपदान को करते हैं। और इन इन एक एक हमने अष्टकम है जिसको दामोदर अष्टकम बोलते हैं, और हम उसको गायन करेंगे, और गायन करने के पश्चात हम दीपदान उनको करेंगे। दीपदान में करना क्या है, आपको लोग को दिया मिलेगा और उसको आपको पहले भगवान के चरणों में करना है, फिर उनके नाभि में घुमाना है, फिर उनको पूरे मुख में घुमाना है, फिर पूरा यशोदा मैया के साथ पूरे शरीर में घुमाना है, फिर ऊपर जितने भी चित्र है सारा सबको दीप दिखाना है, और दीप दिखाने के पश्चात वहाँ पे तुलसी महारानी वहाँ पे सब लोग अपने अपने दीप को रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम कल मैं सेट करता हूँ, क्योंकि आज मैंने ये सेट नहीं किया था, क्योंकि ये तब तो ही बहुत ऐसे थे जो कि समय चला गया, तो कल हम और डिटेल इसके बारे में सुनेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है भजन हम गाएंगे अष्टकम, ये सब बांट दीजिए फटाफट कृष्ण हरे। अभी वो दिया जलाने के लिए शायद माचिस नहीं होगा, कोई अपने घर में से माचिस लाइए। हाँ सर, ये सोचा नहीं था कि दिया जलेगा कैसे।
नहीं, तो बोला,
आप गैस जलाएंगे तो जल जाएगा उससे, जाइए।
नहीं,
अच्छा अच्छा ठीक है, चलो बैठो 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 बैठो, वो रिकॉर्डिंग के लिए समझा। हाँ गाते गाते, हाँ गाते गाते देते थे, ठीक है। अभी सब लोग ना एंगल चेंज कर लीजिए, दामोदर की तरफ देखिए और मैं गाता हूँ, आप उसको देख के गाने का प्रयास करिए, और बीच में आपके पास दीपदान आएगा तो ले लेके आप दीपदान भी करना प्रारंभ करिए, ठीक है। चलो हमारे हीरो ठीक है, शुरू करें। आप लोग ध्यान से सुनिए और उसको गाइए पीछे।
नमामिश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले व्राजमानम्। यशोदाभियो लोकलाजवमानम् परामिष्टमात्यन्ततो द्रुतगोप्याः रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मं विजान्तम् राम्भुजयुग्मेन सातन्तनेत्रम्। मोश्वासकम्पात्रीकान्तकण्ठ स्थितदैव नाम मतिवाद्यम् ीलाभिरानन्दकुण्डे स्वगोसं निमाञ्जन्तमाख्यपयन्त तदीयेषु तद्येषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतास्तं तथा प्रतिवन्दे वरं देवामोक्षं नामोत्सवतिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरे साधकीह। बालम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा विमाना श्यावे हाथां के माने रक्तस्य गोप्या मोषुम्बितं बिम्ब रक्तधरं वे मनस्य विरास्तां मलं लभ्य लाभे प्रसीद प्रभो दुःख जाला दिमागम कृपा दृष्टे भेक्षाते दिनं बतानो गृहानिश मामे ज्ञमे दचिदेश्या रात्मजो बात मुझे भया मुक्ति तो भक्ति भाज तथा प्रेमा भक्ति स्वता में प्रयाचारो में श्रीरा मुदरे धरायात विश्वच धामे नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय लीलाय देवाय तोभ्या नमो नन्द लीलाय देवाय तोभ्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिता जय गौरनिता जय गौरनिता जय जय प्रभु प्रभु
तैयारी करो प्रसाद।